ओम शांति। सभी प्यार से एक बार बोलेंगे ओम शांति। बहुत भाग्यशाली हैं हम, आदरणीय दीदी जी की भी हमने पहले भी क्लास सुनी है ना, स्वयं का अस्तित्व, आत्मा की पहचान सुनी थी ना, आप सभी को याद है मैं कौन हूं, इसका बहुत सुंदर परिचय आदरणीय दीदी जी ने हम सबको दिया था। तो अभी भी आदरणीय दीदी जी हम सबके बीच में आए हैं। दीदी जी 51 वर्ष से इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं और 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर रहकर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय दीदी जी बॉम्बे के एनएस कॉलेज से इन्होंने कॉमर्स मतलब ग्रेजुएट की कॉमर्स में, और आदरणीय दीदी जी बहुत सारे कोर्सेज जैसे मेडिटेशन कोर्सेज और सेमिनार वर्कशॉप, बहुत सारी विशेषताएं आदरणीय दीदी जी की संस्था के साथ रही हैं और संस्था में अपनी बहुत सारी सेवाएं दीदी जी ने दी हैं। 1990 में आदरणीय दीदी जी अपने बिजनेस एवं इंडस्ट्रीज बिंग जो है उसमें एक्टिव पर्सन के रूप में, एक्टिव मेंबर के रूप में भी आदरणीय दीदी जी ने अपना कार्यरत किया है, सेवाएं दी हैं, और अभी रूरल विंग और सोशल सर्विस विंग में भी अपनी एक्टिव सेवाएं आदरणीय दीदी जी देते रहते हैं। दीदी जी के लिए कहेंगे, क्योंकि दोबारा से आदरणीय दीदी जी के हमें दर्शन हुए हैं, कहेंगे खुदा से कोई बात अनजान नहीं होती, इंसान की बंदगी कभी बेईमान नहीं होती, कभी तो मांगे होंगे हमने आपके दर्शन, नहीं तो ऐसे इस कदर आपसे हमारी मुलाकात ना होती, आपसे हमारी मुलाकात ना होती। तो अभी आदरणीय दीदी जी हमें काल चक्कर का रहस्य, सृष्टि चक्कर का रहस्य आपको अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे, उनके मुख कमल से हम अभी सुनेंगे। आदरणीय करीना दीदी जी, भाई बहने सभी आगे आ जाएंगे क्योंकि चेयर खाली हैं, सभी आगे आगे की कुर्सियों पे बैठेंगे। हाँ जी, पीस ऑफ माइंड टीवी पे लाइव जाएगा, इसलिए थोड़ा आगे आ जाएंगे सभी, पीछे वाले भाई भी, बहने भी, सभी आगे वाली कुर्सियां भरेंगे। पुतिन हाँ, सोफे पे बैठ जाएंगे सभी भाई जो भी हैं, सोफे पे आ जाएंगे आगे, सोफे वाली चेयर्स पे। अभी हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, तीन बार। पहली बार, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है। हम बाहर से आए ना, तो अभी हमको अपनी मन की स्थिति को कैसा बनाना है, शांत। जैसे सागर आगे किनारे पर लहरों के साथ होता है, बीच में जाओ तो एकदम शांत हो जाता है, ऐसे हम भी अगर अपनी ब्रुकुटी में दोनों भ्रमर के बीच में आ जाएंगे तो हम अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे, बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं। दूसरा, ओम शांति, मैं आत्मा शांति धाम की निवासी हूं, वहां के जैसी शांति तो इस दुनिया में भी नहीं है, और मेरा घर है वो शांति का धाम। तो जिसका घर ही शांति का धाम हो तो वो कहीं भी जाएगा तो घर का वाइब्रेशन तो शांत होगा ना, और उसके साथ वो चलेगा भी। और तीसरी शांति है, मैं आत्मा शांति सागर परमात्मा की संतान हूं, मेरे जो पिता है वो शांति के अनंत सागर है, मेरे में क्या कमी होगी, मुझे कोई कमी हो सकती है, नहीं। पर वो कनेक्शन टूट गया तो हम भूल गए, फिर से याद करना है, फिर से कनेक्शन जोड़ देंगे तो उसी स्मृति से वो शांति की समर्थि अपने में आ जाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे कहते हैं ना। तो दुनिया में तीन प्रकार के लोग हैं। एक है जो पहले से जानते हैं कि कल के न्यूज़पेपर में क्या आएगा। दूसरे उस प्रकार के लोग हैं जो उस दिन के न्यूज़पेपर को पढ़ के जानते हैं कि भाई आज कल क्या हुआ है। और तीसरे हैं जो उस दिन का भी न्यूज़पेपर मिस कर लेते हैं। तो हम कौन से हैं? हम कौन से हैं? पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले? पहले वाले ना। पहले वाले। यहां क्यों आए हो? पहले वाले बनने के लिए। पहले से हम जान ले कल क्या होने वाला है। ऐसा बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं ना सभी। तो अभी भी देखो कई भाई बहने 10 बजे से पहले आकर बैठ गए थे, कहीं जो है एग्जैक्ट 10 o'clock को आए, और अभी कहीं जो नंबरवार आते रहेंगे, और कहीं जो आप लोगों को दोपहर या शाम को पूछेंगे कि सुबह या दूसरे दिन पूछेंगे कल क्या हुआ था, है ना। तो ऐसे होते ही है तीन प्रकार के लोग। काल चक्र का जो सेशन है वो भी हमें पहले से तैयार करता है कि हमारा भविष्य क्या है। एक बार आपको भविष्य क्लियर हो गया तो आप पास्ट को भी जान लेंगे और आप प्रेजेंट में अच्छी तरह से जी सकेंगे, नॉलेजेबल होके, जागृत अवस्था में। ज्ञान में आना माना जागृत जीवन जीना। तो इसीलिए आज के लेसन में हमें समय के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि वो अगेन तीन प्रकार के लोग, समय से पहले तैयार होने वाले, समय पर तैयार होने वाले, और समय के बाद नंबरवार तैयार होने वाले, है ना। तो इस चित्र में हमें सृष्टि के बारे में कई बार बहुत प्रश्न उठते हैं, ये सृष्टि कब बनाई गई होंगी, कितने वर्ष हुए होंगे, और इसका अंत भी कभी होता है कि नहीं, है ना। ऐसे बहुत प्रश्न मन में आते हैं, तो इस लेसन में उन प्रश्नों का आपको समझ मिलती जाएगी, फिर आपको उसके ऊपर कार्य करना होगा, तभी वो आपका अनुभव बन जाएगा। यहां सुनते हैं तो सीधा मान लेना ये जरूरी नहीं है, ये इसलिए यूनिवर्सिटी है, यहां केवल स्टडी कराई जाती है। फिर जब तक आप उसको वापस जाकर के होमवर्क के रूप में रिवाइज नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो आपका अनुभव नहीं बनेगा। तब तक वो केवल इंफॉर्मेशन का लेवल रहेगा कि माहिती मिली हमको, है ना, और उसको बिलीव करना न करना वो मेरे मुनसफी की बात है। और दूसरा लेवल है कि आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, और तीसरा लेवल है कि वो आपका ज्ञान बन चुका है, आपकी प्रॉपर्टी बन चुका है, आपका अनुभव बन चुका है। वो तीनों एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। तो सबसे पहली बात है, हम देखेंगे इस सत्र का लक्ष्य सृष्टि के भूतकाल और भविष्य को जानकर अपने वर्तमान का महत्व समझना। इसलिए नहीं देवताओं को एक टाइटल दिया जाता है त्रिकालदर्शी, माना तीनों कालों को जानने वाले, इसलिए उनसे कभी गलती नहीं हो सकती, ऐसी हमारी एक मान्यता है। ऐसे ही इस सब्जेक्ट से हम भी त्रिकाल ज्ञानी बन जाते हैं, और फिर उसी अनुसार हमारा एक एक निर्णय होता है अभी इस वर्तमान समय में। दूसरी बात, इस सृष्टि के खेल में मेरा रोल वास्तव में क्या है। चलो सारे विश्व का ये खेल है, पर उसमें मेरा रोल, वो भी आप पहचान पाएंगे। इतना मना एक दर्पण की तरह है ये लेसन। आप जैसे सुनते जाएंगे फिर आपको आता जाएगा कि मेरा रोल कब हो सकता है, या तो आ जाएगा मन में या तो आप उसको एक होमवर्क के रूप में लेकर जाएंगे। हमेशा जरूरी नहीं तुरंत आ जाए किसी को। अपनी पृथ्वी की दो विशेषताएं हैं, या कहो कि दो नियम है। एक है कि इस पृथ्वी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब जाओ अपने घर परम धाम शांति धाम, वहां परिवर्तन होता है? वहां नहीं होता है। आत्मा एकदम स्टार की तरह वहां होती है, बस एक बीज की तरह जो अभी तक धरती में नहीं डाला गया है, वैसी अवस्था है परम धाम में। ठीक है, बीज कब बोलना शुरू करेगा, कब अपना काम करना शुरू करेगा? जब धरती के कनेक्शन में आएगा। ऐसे आत्मा भी बीज है, चैतन्य बीज, तो वो कब अपना कार्य करना शुरू करेगा? जब धरती के कनेक्शन में आएगा। तब तक वो बीज जैसा है वैसा ही रहता है। तो यहां पर क्या होता है? निरंतर परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल आप ही बताओ, दिन से क्या हो जाता है? अच्छा, फिर हम कहते हैं मॉर्निंग, फिर उसके बाद दोपहर, फिर उसके बाद रात, ऐसे भी कहते हैं। फिर हम कहते हैं सोमवार, फिर बुधवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना, चेंज हुआ ना, ऐसे डेट भी चेंज होती रहती है, है? फिर आप देखिए ऋतु बदलती है। अभी हम कौन सी ऋतु में आए हैं? ज्ञान सरोवर समर में। फिर क्या होगा? जून जुलाई से रेनी सीजन हो जाएगा, मानसून हो जाएगा, बारिश का सीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको पता है ना, है ना, तो इस रीति से ऋतु परिवर्तन भी निरंतर है। कभी रुका है? कोई रोक पाया है? नहीं रोक पाया। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि बीज डालो, फिर बीज में से एक छोटा पौधा, फिर पौधे में से धीरे धीरे वृक्ष का निर्माण होता है, कितना बड़ा परिवर्तन ना। और कभी कोई जंगल को रोक सका है? भले आप काट दो, कितना भी काटना है काट दो, लेकिन जहां जंगल है वहां तो वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए प्रकृति में ये एक नियम है कि कोई भी चीज जैसी है वैसी कभी भी नहीं रहेगी। हम खुद देख लो, जन्मे तभी कैसे छोटे बच्चे थे, फिर शरीर बड़ा 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 बड़ा, फिर वृद्ध भी हो गया, इतना परिवर्तन आ गया है कि नहीं। शरीर में भी जो भी कार्य होता, हम भोजन खाते हैं लेकिन फिर एनर्जी बन जाता है, बोलो, इतना परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये पहला नियम, मानते हो ना आप सभी कि ये नियम है सृष्टि का? अच्छा, दूसरा नियम क्या है? ये सारे परिवर्तन जो है ना वो एक चक्र में है। अब देखो, दिन हो गया रात, तो रात, फिर रात के बाद दिन, चक्र हो गया, फिर मॉर्निंग, दोपहर, शाम, रात, फिर मॉर्निंग, फिर मंडे से संडे, फिर मंडे, कैलेंडर में 30 या 31, उसके बाद फिर से जनवरी से दिसंबर के बाद फिर से जनवरी, हम सब मानते हैं ना। शरीर में देखो, वृद्ध हो जाता है तो फिर से बच्चे जैसा हो जाता है, होता ना, बच्चों की साइंस आती है तो माँ बाप कहते हैं बच्चे पहले हमने आपको संभाला, अभी आपको हमको संभालना है, क्योंकि हम भी बच्चे जैसे हो गए, फिर से भूल जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो बच्चों को बोलना पड़ता है, अरे पापा संभालो, पापा गिव मत जाओ, यू नो, क्योंकि एकदम बच्चे जैसे हो जाते। तो इस रीति से हम देखते हैं कि वो भी चक्र ही है। माना धीरे धीरे जो व्यक्ति वृद्ध होता जा रहा है, अभी थोड़े समय के अंदर फिर से एक बच्चे का रूप ले लेगा। माना मृत्यु भी क्या है? इस परिवर्तन की एक विधि है, बस एक विधि है कि जो शरीर अभी नहीं चल पाएगा, तो एक नया शरीर लेना पड़ेगा, तो फिर उसका चक्र चलेगा। अच्छा, हम देखते हैं कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, खून का कैसे सर्कुलेशन होता है ना, कैसे इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड बन जाता है, फिर सब जगह पहुंचाता है हार्ट उसको, नहीं कैसे। उसके बाद आप देखो अपना श्वास का चक्र देखो, जो श्वास नया ऑक्सीजन से भरा हुआ श्वास है वो हम लेते हैं, फिर बाकी का पुराना वापस निकल जाता है, ये भी एक सर्कल में चलता है। फूड डाइजेशन, वो भी एक सर्कल में चलता है, हर चीज सर्कल में। आप देखिए तो जो आत्मा है उसका भी एक सर्कल होगा कि नहीं होगा, यहां धरती पर शांति धाम में नहीं, पर अगर हर चीज यहां नियम में निरंतर परिवर्तन में है, और दूसरा कि वो जैसे वो चक्र में है, तो फिर आत्मा जब शांति धाम से आती है उसमें भी परिवर्तन आएगा। लेकिन शास्त्रों में तो ऐसे दिया है आत्मा तो मतलब कभी कभी बदलती नहीं है, जैसी है वैसी ही रहती है, पढ़ा है ना आपने, सारा प्रभाव शरीर का ही होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है, आत्मा प्रभावों से परे होती है। कैसे, सृष्टि का नियम तो ये है निरंतर परिवर्तन। तो ये न्यू रेवलेशन हमें मिला कि आत्मा जब सृष्टि पर आती है अपना पार्ट बजाने, तो उसे सृष्टि के नियम अनुसार चलना पड़ता है, नहीं तो वो पार्टी कैसे बजाएगी, क्योंकि उसको सृष्टि के जो तत्व मिलते हैं कार्य करने के लिए, तो नेचुरली उसके साथ जब कार्य करेगी तो उसमें प्रभाव आएगा, परिवर्तन होगा आत्मा के अंदर, समझा ना। वही आत्मा जो शांति धाम में, उसको कुछ नहीं होता है, पर यहां आकर उसमें परिवर्तन आएगा। तो क्या यह भी सच होगा कि उस परिवर्तन का भी एक चक्र होगा, जैसे शरीर बाल बच्चे से फिर युवा, फिर मतलब आगे वृद्ध अवस्था तक जाती है, फिर वापस बच्चा बनता है, तो आत्मा का भी ऐसा कोई चक्र होगा? क्या हमें पता है, क्या आत्मा के चक्र के बारे में दुनिया में पता है? नहीं पता ना, क्योंकि वो सब्जेक्ट लिया ही नहीं गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि बोला आत्मा तो निर्लेप है, उसको कोई लेपछेप लगता नहीं है, कभी वो सब्जेक्ट में ही नहीं गए। लेकिन अगर सब कुछ हमारे भीतर चक्र में घूमता है, यहां तक कि आत्मा का भी देखो मन बुद्धि संस्कार, वो भी चक्र में घूम रहा है। इधर आके मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, हम कर्मों में आते हैं, फिर वो कर्मों के रिकॉर्डिंग होती है, उसका संस्कार बनता है, संस्कार से फिर विचार उत्पन्न होता है, ये भी चक्र हुआ। मतलब कुछ भी बचा है बिना चक्र के? हाँ ठीक है, कर्म निमित्त बनते हैं, लेकिन है ना चक्र, कर्मों का चक्र है ना, तो वो मानना पड़ेगा। जैसे चांद का चक्र है, चांद एवरी 15 डेज अमावस्या से पूनम तक जाता है, और फिर पूनम से अमावस्या में आता है, आता है कि नहीं? तो ये सब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, उसी अनुसार हम लोग अपने उपवास वगैरह भी रखते हैं ना, है कि नहीं? क्यों, हाँ नहीं दिखती है तो हम क्या करते हैं, जो नहीं दिखती और उसको नहीं सोचते उसके बारे में, तो हम प्रकृति के आधार से सब कुछ करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, प्रकृति के आधार से, भाई आज एकादशी है तो एकादशी का करो, ऐसे है ना। तो इस प्रकार से हम प्रकृति का आधार लेकर के अपनी दिनचर्या को बिताते रहे, लेकिन थोड़ी चक्र से छूटे हैं, छूटे तो नहीं ना, एकादशी भी बार बार आती है ना, तो उसी अनुसार हम करते हैं ना, दैट मीन्स हम मानते हैं ना। बस अभी जो हमको नहीं पता उसी के बारे में देखना है, और वो क्या है, आत्मा का इस सृष्टि पर चक्र। सुनना ध्यान से, आत्मा का माना हर एक जीव आत्मा का इस सृष्टि पर चक्र क्या है, ठीक है। बाकी सृष्टि अनादि है, सृष्टि का कंप्लीट विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए मान्यता है दुनिया में कि हम लोग करोड़ों साल से इस सृष्टि पर है, क्योंकि सृष्टि करोड़ों साल की है, अनादि अविनाशी, कभी सृष्टि का अंत ही नहीं होता है। तो नेचुरली हमारी मान्यता क्या होगी कि जब सृष्टि का ही अंत नहीं है, सृष्टि ही करोड़ों साल से, तो हमारा भी जीवन कैसा होगा, करोड़ों साल का होगा, क्योंकि चक्र का ज्ञान अपने लिए नहीं था। अब जब हमें चक्र का ज्ञान मिलेगा, तब पता चलेगा कि भले हम अनादि काल से परमधाम से सृष्टि पर आते हैं, पर हमें भी एक चक्र से गुजरना पड़ता है, जो चक्र रिपीट होता रहता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। नॉट बिकॉज भगवान ने बनाया, भगवान के अंदर नॉलेज है, वो सब कुछ देख सकता है परमधाम से, इसीलिए वो बता पाता है, और वो नेचुरली ज्ञान का सागर है। एक ही आत्मा ऐसी है सारे संसार में जो उसके अंदर नेचुरली नॉलेज है, उसको कहीं से टीचर से गुरु से कहीं से लेना नहीं है, इसीलिए वो परमात्मा है ना, ईश्वर है। हम ऐसे ही थोड़ी उनको याद करते हैं, कुछ तो उस आत्मा में है जिससे हम जब भी दुख आता है, जब भी प्रश्न उठता है, उलझन होती है, तो हम उनको याद करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के सागर है, नेचुरल नॉलेज हर चीज का। अभी आप उनसे बोलेंगे कि मुझे प्रूफ दो, प्रूफ दो, क्या जज साहब को कोई बोलेगा आप मुझे प्रूफ दो? कोर्ट में कोई जज साहब से मांगेगा आप मेरे को प्रूफ दो? नहीं। तो परमात्मा क्यों प्रूफ देंगे? वो कहते हैं जो नेचुरल वस्तु है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो अनादि है वो बता रहा हूं, उसके लिए भी तुम प्रूफ मांग रहे हो। हां, मैंने तुमको सृष्टि दी है, सृष्टि की कोई भी चीज को तुम कैसे भी तोड़ फोड़ के जोड़ के देख लो, कैसे बनी है, किससे बनी है, वो करो ना, मैंने तुमको बहुत काम दिया है, जहां आपको सबूत भी मिलेगा, आप करते रहो, आप मेरे से भी सबूत मांगते हो। तो ये बात सोचने वाली है ना कि हम मनुष्य आत्मा भगवान से भी सबूत मांगते हैं। इसलिए एक बात क्लियर करो कि जो भगवान सुनाते हैं ना, उस पर हमें मंथन करना है, हमारी बुद्धि को चलाना है, क्योंकि उसी द्वारा हमारी बुद्धि साधारण या विकारी बुद्धि से दिव्य बुद्धि बन सकती है। तो कल्याण किसका होगा? हमारा ही होगा। तो इसीलिए ईश्वर प्रूफ नहीं देते हैं, कहते आप ही मंथन करो, आप ही अनुभव लो, समझा? तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम देखेंगे कि साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है एक रीति से, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइंस ने। उसमें क्या कहा गया है कि जब आप बॉल पहली बार फेंकते हैं, तो सबसे पहला जो बाउंस होता है ना, जो चित्र में बताया है, वो ऊंचा होता है, फिर वो अपने आप थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे करके एकदम जमीन तक पहुंचता है, ठीक है? ये बात देखी है ना सबने छोटेपन में, बॉल कैसे एकदम पहले ऊंचाई से, फिर धीरे नीचे 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 करके, फिर हम जाएंगे और उसको उठाएंगे और फिर से बाउंस देंगे, तो फिर से ऊंचा हो जाएगा। ये जो ऊंचाई से नीचे का प्रोसेस नेचुरल है, लेकिन अगर आपने बॉल उठाया नहीं तो वो जमीन पर ही रहेगा, फिर उठेगा, उसके लिए हाथ चाहिए ना। ठीक वैसे ही ये सृष्टि का भी नियम है कि सबसे पहले सबसे ऊंचाई पर
सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। और हमें इतिहास में क्या बताया गया कि लोग तो है ना पत्थरों के इसमें रहते थे गुफाओं में और पत्थरों से चीजें बनाते थे, उनको तो कुछ भी मालूम नहीं था, कोई कपड़े भी नहीं पहनते थे, हमको तो ऐसी हिस्ट्री बताई। जबकि परमात्मा ने क्या देखा कि सबसे ऊंचाई के स्तर पर सृष्टि आरंभ होती है। अब आप ही सोचो सबसे ऊंचे स्तर पर कैसा होगा दुनिया का चित्र, क्या पत्थर युग होगा? सोचो जब मनुष्य को कुछ भी नहीं आता है तो वो स्तर कैसा होगा। इसलिए उस आधार से कहते हैं ना आज सब बुद्धिजीवी है, आज तो संपन्नता है, आज हमारे अंदर बहुत नॉलेज है, आज हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं, नई नई चीजें निकाल रहे हैं, अभी हम ऊंचाई पर जा रहे हैं। ये दुनिया के का दृष्टिकोण है। लेकिन परमात्मा क्या देख रहे हैं कि ये बॉल धीरे धीरे आत्मा के लेवल पर, आत्मा का लेवल सबसे पहले बहुत ऊंचा था, फिर धीरे धीरे अपने आप कर्म करते 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 आत्मा का लेवल ऑर्डर से केओस में पहुंचा। ऑर्डर माना एकदम सिस्टमैटिकली मूल्य से भरपूर जीवन जिया, और केओस माना एकदम क्लेश वाला हो गया। तो आज आप देखिए समाज में कौन सा चित्र है, क्लेश वाला ज्यादा है या सिस्टमैटिकली चलना ज्यादा है? क्लेश कितने बोलते हाथ खड़ा करें जो आज का सीन क्लेश वाला है? तो आज का सीन ऑर्डर वाला कहेंगे या केओस वाला? केओस वाला। तो बॉल किधर है? सबसे नीचे, ठीक है। लेकिन फिर लॉ ऑफ नेगोंट्रोपी कहता है कि फिर से उसको उठाओ और फिर से बाउंस करो। माना ये चक्र हुआ कि नहीं है? फिर से बाउंस करेंगे तो फिर केओस से ऑर्डर तक पहुंचेगा, फिर वापस ऑर्डर से केओस तक आएगा। इसकी अवधि होगी ना, इसकी अवधि होगी। तो भगवान कहते हैं कि ये जो चक्र दिखाया आपको वो चक्र की एक अवधि है, माना ऑर्डर से केओस तक जाने की अवधि है 5000 वर्ष। और भारत के संस्कृति को कितने वर्ष कहते हैं? भारत की सबसे पुरानी संस्कृति कहते एक तो, और उसको कितने वर्ष दिखाया है? 5000। हर जगह 5000 ही बोलते हैं, भारत की संस्कृति को 5000 वर्ष हुए। और इसीलिए सबसे पहले सीन में कौन होगा? अमेरिका होगा, यूरोप, चाइना, भारत, क्योंकि भारत सबसे पुरानी संस्कृति है। इससे सबसे पहला सीन कौन सा होगा? ऑर्डर वाला, सबसे ऊंचाई वाला, वो किस धरती पर होगा? भारत भूमि पर होगी। यही धरती इतना ही माप धरती का होगा, कोई धरती छोटी नहीं हो जाएगी। लेकिन हम इतनी स्पेस थोड़ी लेंगे जीने के लिए, तो भी आज के हिसाब से आपको क्या लगता है लोग ज्यादा होंगे कम होंगे? नेचुरली कम होंगे, सृष्टि चक्र का पहला सीन है तो कम होंगे, क्योंकि आज पॉपुलेशन भी दुख का कारण है। कितनी चिंता उसके कारण हो रही है कि कैसे सबको खाना मिलेगा, कैसे पानी मिलेंगी, कैसे रहने का स्थान मिलेगा, है ना? तो उस समय ये चिंता है ही नहीं, सब कुछ ऑर्डर में है, तो लोग कम होंगे ना। तो इसीलिए आज कितने 130 करोड़ और भी आते होंगे परमधाम से, वो रास्ता भी बंद नहीं होता है, लेकिन पहला सीन सबसे कम होगा। तो माना हम जो होंगे, जो भी सारी सृष्टि के जो भी होंगे उस समय, वो कैसे रहते होंगे? सुखी, संपन्न, क्योंकि सारी प्रकृति उनके लिए है। और वो प्रकृति भी केओस से ऑर्डर में आ गई ना। प्रकृति का केओस माना क्या? इधर धरती कम हुआ, इधर उछल खाई नदी, इधर सागर का उछल हुआ, वॉल्केनो इरप्शन हुआ, धरती क्या बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी फटी, ये सब होता है ना, उसको प्रकृति का केओस बोलते।
वो लास्ट होता है एकदम। जब वो देखती है प्रकृति के मनुष्य अभी बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं और उसका बैलेंस खत्म हो जाता है तो फिर वो क्या करेगी? प्रकृति का प्रकोप तो होगा ना, तो वो केओस से फिर ऑर्डर में आ गई है, तो प्रकृति कैसी होगी? सारे खान भरपूर, एकदम फलीभूत धरती, फलीद्रुप धरती एकदम, और सब कुछ अवेलेबल और हाई क्लास फर्स्ट क्वालिटी, समझा ना? तो वो भी फर्स्ट सीन जिसमें कोई भी प्रकार की कमी नहीं है, उसको कहते हैं ऑर्डर। और केओस माना सब कुछ होते भी सबकी कमी लगती है, कोई भी चीज पूरी लगती नहीं है, और जो भी चीज है उसमें भी भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, तो वो सुख देगा? नहीं सुख देगा, उसको बोलते केओस, समझा ना? तो दोनों के बीच की अवधि है 5000 वर्ष। तो हम देखते हैं कि अकाउंट्स में एक होता है लॉ ऑफ डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स में होता है ना कि आपने एक नया जमीन लिया, नया फर्नीचर लिया, नया घर लिया, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा अच्छी होती है, तो कहते हैं नया है, अब भी लिया है, तो उसकी वैल्यू सबसे बढ़िया होती है, फिर एक साल, फिर दो साल, फिर धीरे धीरे उस जमीन घर की या फर्नीचर की वैल्यू बेचने जाओ तो कम हो जाती है, धीरे धीरे एकदम कम हो जाती है। जब एकदम कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? उसको निकाल देते हैं और नया लेके आते हैं, है ना? ये भी चक्र है, देखो हर चीज जो भी सृष्टि पर है ना, इसमें ये चक्र चलता ही रहता है। तो इसीलिए हर नई चीज को पुरानी होनी ही है, आप इसको टाल नहीं सकते, कितना भी रंग रोगान करो, कितना भी रिपेयरिंग करो, लेकिन नई चीज को एक दिन पुरानी होनी ही है। तो जब ऑर्डर में सृष्टि है तो नई सृष्टि है, लेकिन वही सृष्टि जब केओस में चली जाती है, क्लेश में, वो पुरानी हो जाती है। आप कितना भी नई दिल्ली बनाओ, न्यू बॉम्बे बनाओ, कितने भी पुल बना दो, कितने भी मेट्रो बना दो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन संस्कृति के हिसाब से, माना आत्मा के लेवल के हिसाब से, सब पुराना है। आप पुराने में से ही नया बना रहे हो उस समय भी, और आप देखो पुल बना है, मेट्रो बना है, और अब भी समाचार आएगा एक दो महीने में कि अरे ये तो पटरी से निकल गई, ये पुल टूट गया, है ना? तो इसी से मालूम पड़ता है कि ब्रिटिशर्स ने जो बिल्डिंगें बनाई है भारत में 100 साल से भी अधिक पुरानी, वो अभी भी कैसी रही है? बिल्कुल टूटी नहीं है, रेलवे पुल भी नहीं टूटा है, है ना? मजबूत है, 100 साल पहले की ही बात है। आप सोचो 5000 वर्ष पुराना जो होगा वो कैसा होगा? फर्स्ट क्लास एकदम, है कि नहीं? तो इसीलिए कहते हैं ना, जैसा मनुष्य होगा वैसा उसका फर्नीचर होगा, समझा ना? तो हम भी कैसे होंगे? जब एकदम नई आत्मा परम धाम से आती है तो एकदम एकदम उच्च स्तर की आत्मा होती है, इसीलिए वो शब्द यूज करते हैं कि वो पवित्र आत्मा है। क्यों पवित्र शब्द यूज करते हैं? क्योंकि उसका स्तर सबसे ऊंचा है, हाँ? तो उसको कहते पावन, पवित्र, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं, जिससे हमको पता चले कि भाई उसमें अच्छाई बहुत ज्यादा भरी हुई है, बुराई के लिए स्पेस ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? पवित्र, प्योर, न्यू, है ना? जिसमें बुराई के लिए जगह ही नहीं है। तो हम ऐसे थे क्या लगता है आपको? हम ऐसे थे, आपको लगता है अपने लिए कि मैं भी ऐसा था, ऐसी थी, मेरे में एक भी बुराई नहीं थी, बुराई का ज्ञान ही नहीं था, अच्छा अच्छा, आजकल का बचपन देखो, आप कहेंगे ऐसा?
आजकल के कोई बच्चे बोले नहीं है।
आजकल के जितने भी बच्चे जन्मते हैं कोई ना कोई डिफेक्ट वाले ही होते हैं, बिहेवियर में, संस्कारों में। जी नहीं, अपने आप वो जीन मना, हाँ जीन्स में आता ही है, लेकिन साथ में वो अपने संस्कार भी होते हैं ना उसके। तो डेग्रेडेशन हर चीज में है। आजकल नए बच्चों के जन्म में भी डेप्रिसिएशन है, समझा? हर चीज में है, कोई भी छूटा नहीं है। आप कितना भी अच्छा बगीचा बना लो, कहीं भी लाखों करोड़ों रुपया लगा के बनाओ, फिर भी क्या होगा एक दिन? और अभी तो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ऐसे बिगाड़ने वाले लोग भी तो होते हैं ना, आलसू लोग भी बहुत होते हैं। आपने अपॉइंट किया उसको बगीचा संभालने के लिए, लेकिन वो बहुत आलसू है तो नहीं करता है बराबर, नुकसान भी कर देगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर नई चीज को एक दिन पुरानी होनी है, और जब अति पुरानी हो जाती है तो उसको फिर नया बनना पड़ता है। आप देखिए आजकल क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग बोलते हैं ना, तो रिसाइकलिंग में हमारी पुरानी चीजें चली जाती है और एकदम ब्रांड न्यू होकर वापस आती है। तो ये प्रूफ है ना कि कोई भी पुरानी चीज नहीं होती है। तो अब देखिए, ये चार प्रकार के मकान है, एक महल है, एक बंगलो है, एक फ्लैट है, एक कुटिया है। चारों में फर्क क्या है? शायद पैसों का, इकोनॉमिकली, है कि नहीं? एक को बोलेंगे भाई वो बहुत धनवान अमीर है, फिर नंबरवार फिर गरीब है, है ना? और कोई फर्क? जी नहीं नहीं एक ही समय पर ये चार है, तो खाली इकोनॉमिकल फर्क होगा ना पैसों का, कि भाई एक अमीर है एक सो कॉल्ड गरीब कहेंगे, ऐसा ना, इतना ही फर्क है ना। पर हम जो चार युगों की अभी बात करेंगे 5000 वर्ष के अंदर, उसमें केवल इकोनॉमिकल फर्क नहीं है, आत्मा के लेवल का फर्क है, इसलिए संस्कारों का फर्क है, बहुत बड़ी बात है। युग परिवर्तन माना आत्मा के प्यूरिटी का परिवर्तन, आत्मा की शक्ति का परिवर्तन, आत्मा बल जिसको बोलते हैं, और साथ में आत्मा के संस्कृति संस्कारों का फर्क। अब हम देखते हैं ये क्या है, स्वस्तिका। स्वस्तिका हम कब ड्रॉ करते हैं? शुभ कार्य में, राइट? तो उसके चार हाथ होते हैं, शुरू किस हाथ से करते हैं? राइट, राइट से शुरू करते हैं, और राइट वाले को ऐसे एकदम सीधा रखते हैं, है ना? हाँ, और ये देखो चार बिंदु है उसमें, वो सोचो आप आत्मा का प्रतीक है। आत्मा क्या कर रही है? 5000 वर्ष के चक्र में चारों युगों से पार हो रही है, ये उसका एक चक्र है। ऐसे अनादि रूप से उसका चक्र फिरता ही रहता है, इसीलिए कभी भी सृष्टि का प्रलय नहीं हो सकता। बड़ा परिवर्तन होगा, आपको लगेगा अभी तो प्रलय हो रहा है, लेकिन वो प्रलय नहीं होगा, बड़ा परिवर्तन होगा, विशाल, लेकिन प्रलय नहीं होगा। वो समय की धारा का मेथड है चेंज होने का, जो हम नहीं कर पाएंगे, कितना भी करे तो भी नहीं हो पाएगा, लेकिन वो प्रकृति बहुत प्यार से आसानी से कर लेती है। तो अभी पहला हाथ ऐसे है, हाँ हम किसी पर ऐसे हाथ रखते हैं ना, किस लिए रखते हैं? हाँ बोलो बोलो, आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, तो जो पहला युग है वो आशीर्वाद का युग है, माना जो भी आत्माएं इस युग में आएगी, कंपैरेटिवली कम, सबसे कम पॉपुलेशन, वो आशीर्वाद वाली आत्माएं होंगी। कहते ना दुआ होगी तो आपको कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, इसलिए माँ बाप के आशीर्वाद, काम करने वालों के आशीर्वाद, घर के आशीर्वाद, सबके आशीर्वाद चाहिए आपके ऊपर। इवन आपके घर में जो बाई काम करने आती है उसको आपको आशीर्वाद देना चाहिए, है कि नहीं? तो कोई भी हो, अगर आप आशीर्वाद के रूप से जी रहे हैं तो क्या होगा? फायदा ही फायदा, कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, आनंद आपके जीवन में सतत होगा। तो समझा, पहले युग का ये स्तर है, कोई नेगेटिव चीज नहीं, दुख का तो नॉलेज नहीं। अच्छा, और आगे जाओ, अभी हाथ थोड़ा नीचे आ रहा है, मन सोच रहे हैं आशीर्वाद देने का, लेकिन देते हैं लेकिन भरपूर नहीं, थोड़ा कम पहले से। तो वो दूसरा युग है जिसमें मनुष्य आत्माएं और जीव आत्माएं तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि परमधाम से आना है सबको, तो बढ़ती जाएगी, लेकिन आत्मा का लेवल का जो स्तर है वो थोड़ा सा परिवर्तन होगा, थोड़ा सा पहले जो था उससे। फिर हाथ दूसरी तरफ चला जाता है, उल्टा, माना आशीर्वाद बंद और अभी एक दूसरा सीन शुरू होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि दुख का आरंभ होता है और एक श्राप का अनुभव धीरे धीरे आरंभ होता है। जहां ब्लेसिंग्स नहीं तो क्या होगा? धीरे धीरे, है ना, कोई हमारे लिए बुरा बोलेगा तो हो सकता है ना वो हो जाए हमारे जीवन में, तो वो शुरुआत होती है, तब पता नहीं चलता है इतना। और फिर हाथ ऊपर चला गया, तो ऊपर क्यों जाता है? मारने के लिए। तो ये युग ऐसा है जिसमें आत्माएं सबसे ज्यादा है, लेकिन सबको मार पड़ती है, कोई का जीवन पूरा ब्लेसिंग से कभी हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे ये आत्मा का स्तर का परिवर्तन होता है जिसका ये एक चक्र है, तो इसको सृष्टि का चक्र ही कहते हैं। कोई ने आत्मा का चक्र नहीं कहा, पर काल चक्र कहा या सृष्टि चक्र कहा। आशीर्वाद, आशीर्वाद की कमी, आशीर्वाद श्राप में परिवर्तन होने लगता है और पूर्ण श्राप लास्ट युग में होता है। तो सृष्टि चक्र कितने युग का खेल है? चार युग का खेल, अवधि 5000 वर्ष। पर यह रुकता है? कोई रोक नहीं सकता, ये अनादि अविनाशी रूप से चलता रहता है। अब जो सबसे पहला युग देखा उसको हम क्या कहेंगे? धरती पर स्वर्ग। स्वर्ग ऊपर मरने के बाद या नरक मरने के बाद नीचे पाताल में नहीं है, इस सृष्टि के सिवाय ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सूक्ष्म लोक है और परमधाम है। लेकिन सारा कर्मों का खेल किधर है? तो सुख और दुख का खेल किधर है? तो जो सुख में होगा वो कैसे होगा? स्वर्गीय वातावरण में होगा, जो बिल्कुल दुख में है वो नरकीय वातावरण में है। लेकिन ऐसा नहीं आज कोई महल में रह रहा है तो वो स्वर्ग में है और जो कुटिया में या रास्ते पर रह रहा है वो नर्क में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नर्क माना सबके लिए नर्क होगा, स्वर्ग माना सबके लिए स्वर्ग होगा, इतना तो हमारी बुद्धि में आना चाहिए। तो इसीलिए सृष्टि का सुवर्ण काल माना सबसे पहला युग सतयुग, माना बेस्ड ऑन सत्य, जो सत्य है जीवन का वही आत्मा के अंदर है, वो सत्य से ही जी रही है, इसीलिए पवित्र कहा जाता है। पवित्र इज इक्वल टू सत्य, सत्य नहीं अपने अंदर तो हम पवित्र नहीं। तो इसीलिए सतयुग, उसमें क्या होगा? पांचों तत्व पवित्र होते हैं। पांच तत्व कौन से बताए थे? धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पांचों तत्व कैसे होंगे? पवित्र। संपूर्ण संपन्नता होगी, सारे खान रीफिल हो गए होंगे, सब कुछ भरपूर होगा, अनाज से लेकर के हर चीज। और एक एक मनुष्य आत्मा जो है ना, इतने अच्छे टैलेंट से भरे होंगे, उनको सीखना नहीं पड़ेगा, इतने अच्छे टैलेंट सोलह कला से संपूर्ण होते हैं, इसीलिए उनको मनुष्य नहीं कहा जाता है, उनको एक हाई लेवल का नाम दिया जाता है, देवी और देवता। उसके बीच में जब कलयुग की शुरुआत हुई थी ना, तो हम कहते थे सज्जनों और देवियों, ऐसे एड्रेस करते थे। अभी तो वो भी नहीं आता है, अभी तो मिस्टर एंड मिसेज आ गया जब से वो अंग्रेज आ गए, है कि नहीं? तो इसीलिए, या तो भाई बहनों जो भी कहो, लेकिन मानते नहीं अंदर से, जस्ट बोलने के लिए बोलते। पर सुवर्ण काल में ऐसा संपूर्ण संपन्नता थी, शिक्षा होगी, एजुकेशन होगा, लेकिन भूतकाल का कोई एजुकेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे आज आप बैठे हो, आपको मालूम है कल क्या होगा? कंप्लीटली नहीं पता ना। हाँ, आज में हो ना आप अभी। ऐसे ही सचमुच स्वर्ण काल में जब हम जाएंगे तो पास्ट का हमको कोई भी नॉलेज नहीं होगा, इवन परमधाम को भूल जाएंगे, इतना हम वर्तमान में होंगे। जो अकेले वर्तमान में जीता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता, लेकिन जो भूतकाल में भागता है, जो भविष्य की चिंता करता रहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो इसीलिए सुवर्ण काल में जो शिक्षा मिलती है वो कभी भूतकाल की नहीं होगी, अंदर की कलाओं का सुंदर प्रदर्शन करने के लिए शिक्षा होगी। जो भी आपके अंदर सुंदर कला है, बस वो बाहर प्रदर्शित करनी है, वही शिक्षा है। नेचुरल एजुकेशन। फिर नहीं गुरुकुल हुआ, तो गुरुकुल में फिर शास्त्रों का अध्ययन मेन था, लेकिन बाकी भी सब था। लेकिन यहां शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं है, यहां केवल आपके अंदर की कलाओं को विकसित किया जाता है बस, और ब्यूटीफुल होता है हर एक चीज। फिर सबका रोल अलग अलग होगा, वहां हम सब एक जैसे रोल थोड़ी बजाएंगे, सबका रोल अलग अलग होगा, पर किसी की किसी के साथ तुलना कभी नहीं होगी। ऐसा बुद्धि नहीं है, दिव्य बुद्धि बोला जाता है उसको, कोई तुलना ही नहीं करेगा, कोई मेरा तेरा तो कभी नहीं करेगा। फिर और क्या होगा वहां? व्यापार होगा, पर बेचने के भाव से नहीं, माना पैसा होगा बेचने करने के लिए, खरीदने के लिए नहीं, और उसके लिए कोई पैसा भी नहीं होगा, पर व्यापार किस आधार पर हुआ? जिसकी जो टैलेंट है, जो स्किल है। आप लोग गांव में कभी करते थे ना, दादाओं के जमाने में किसी के पास गेहूं उगता था तो वो अपने पड़ोसी या अपने रिश्तेदारों के पास वो गेहूं लेके जाते थे, और अगर उनकी मूंगफली की खेती हुई है तो वो आपको मूंगफली देते हैं, ऐसा। अभी भी हम गांव गए थे ना महाराष्ट्र में, तो वहां पर भी वो हमको मिलने आए ना, तो तुरंत मूंगफली, पपैया, ये सब लेके आए कि भाई हमारे खेत में उगा है करके। कितनी खुशी होती है, और हमको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ा उसके लिए, समझा ना? तो इस प्रकार का सुवर्ण काल में बहुत अच्छी रीति से व्यापार होगा, सुंदर से सुंदर चीजें बनेगी। इसलिए तो आज तक आप मंदिर देखो, पुराने मंदिर भारत के, क्या कला है, कोई दूसरी दुनिया में भले वो सेवन वंडर्स बोले, लेकिन कोई के पास वो ताकत नहीं है जो हमारे मंदिर बनाने वालों के पास है, जो हमारे आर्किटेक्ट है। तो वो पुरानी संस्कृति है ना अपनी, तो आप सोचो सुवर्ण काल में कैसा होगा। फिर सबका निस्वार्थ प्रेम होगा, सभी योनियों के प्रति होगा, जितनी भी योनि उस समय होगी, जैसे मनुष्य कम होंगे योनि भी कम होगी, है ना, योनि भी कम होगी, जैसे मच्छर होंगे सुवर्ण काल में, मच्छर नहीं होंगे, है ना, हाँ, चींटियां भी नहीं होंगी, फिर वो चूहा भी नहीं होगा, मतलब ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं होगी, तो क्यों होंगे वो वहां पर, है कि नहीं? तो कुत्ता होगा, कुत्ते बिल्ली भी नहीं होते हैं, जैसे बिच्छू वगैरह नहीं होते हैं, ऐसे कुत्ते बिल्ली भी नहीं होते हैं, बहुत सुंदर प्राणी पक्षी, बहुत सुंदर, मनुष्य को एकदम बहुत अच्छा उनके साथ खेलने करने के लिए, मनोरंजन के लिए होंगे। तो हिंसा होगी प्राणियों में भी? कोई हिंसा नहीं होगी, वो सुवर्ण काल है। तो साथ में कोई भी कायदा कानून लिखित में नहीं होगा, जो ऐसे चोरी से बदल देते होंगे, कोई कायदा कानून लिखित में नहीं होगा, क्योंकि सबके जीवन में ही स्वाभाविक रीति से होगा। हाँ, जेल होगी, कोर्ट होगा, हॉस्पिटल होंगी, डॉक्टर होंगे, भले आज डॉक्टर तो बहुत जरूरी है तो भले हो, लेकिन सुवर्ण काल में नहीं होंगे, समझा ना। ऐसे फिर समय और वातावरण सतो प्रधान होगा, समय भी सतो प्रधान और वातावरण, पूरा पर्यावरण जिसको बोलते हैं, पूरा सतो प्रधान, उसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीटली राइटियस, सुपर राइटियस, है ना, सतो प्रधान। वहां युद्ध का तो ज्ञान ही नहीं होगा, युद्ध क्या होती है, झगड़ा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो सब ज्ञान ही नहीं होगा। जो भी चीज नेगेटिव थॉट को पैदा कर सकता है ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं होगी, समझा। ये हम ही है, हमारी ही बात हो रही है, कोई और नहीं है, या कोई और ग्रह से नहीं आएंगे, हम ही है, हमारा ही स्वरूप है जो हम भूल गए हैं। 100% सभी आत्मा की स्वस्थ स्मृति में, सभी 100% आत्माएं स्वस्थ स्मृति में जिएंगे, वेरी हेल्दी लिविंग, हेल्दी थिंकिंग, हर एक रीति से स्वस्थ, 100% निरोगी काया, कंचन काया बोलते ना, नहीं तो क्यों शब्द है कंचन काया, ऐसे थोड़ी खाली इमेजिनरी है, हमारी थी कंचन काया, निरोगी काया थी। तो ये है सुवर्ण काल, समझा। पहला युग 5000 वर्ष में, उसकी अवधि है 1250 वर्ष। आपने देखा स्वस्तिका का भी चार इक्वल भाग में चार भाग है, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे नहीं, शास्त्रों में ऐसा बताया है, ये बहुत लंबा था, ये थोड़ा छोटा है, ये और लंबा है, लेकिन वास्तव में स्वस्तिका में बताया गया है चार इक्वल हिस्से हैं। ऐसे जो सतयुग सुवर्ण काल है उसकी अवधि है 1250 वर्ष। समय, समय बोलते हैं ना, समय, सब जो घड़ी टिक टिक शुरू करती है 12 से, तो फिर ऐसे 3 बजे तक आएगी ना, तो इतना जो समय का अवधि है वो है 1250 वर्ष। और उसमें हमारी उम्र जो है वो एवरेज हम कह रहे हैं, एवरेज मिनिमम 150 वर्ष, पूर्ण आयु जीते हैं स्वस्थता से, कोई रोग नहीं, कोई पेन नहीं बॉडी में, कोई बॉडी काला हो, कोई बॉडी एकदम मोटा हो छोटा हो, ऐसा कुछ भी डिफॉर्मिटी नहीं, पोलियो वोलियो कुछ नहीं, एकदम स्वस्थता चाहिए। किनको ऐसी स्वस्थता चाहिए, हाथ खड़ा करें, सब को चाहिए। तो मानते हैं ना कि हम ऐसे थे, नहीं तो कैसे आई आपकी स्मृति में बात कि हाँ मुझे पूर्ण स्वस्थता चाहिए। अगर वो बिल्कुल नहीं होता तो आपकी मेमोरी में ही नहीं आता आज, लेकिन आया अंदर, माना हम थे, ऐसे थे तभी आया है। तो इसीलिए आपको आगे भी इसके बारे में सब पता चलेगा कि 1250 वर्ष में कितने जन्म लेंगे, कैसे कर्म होंगे, ये सब आगे के लेसन्स में है, लेकिन शायद यहां नहीं भी हो पाए तो आप वहां के सेंटर पर जाकर पूरा कर सकते हैं। फिर दूसरा युग शुरू होता है, माना 1250 वर्ष कंप्लीट हुए तो आत्मा का लेवल में थोड़ा फर्क आया। क्यों? क्योंकि जिस शक्ति को लेके आत्मा परमधाम से आई थी वो शक्ति यूज करती है कर्मों में, भले बुरा काम नहीं किया, नहीं तो शक्ति एकदम ये हो जाती है, खींच जाती है, लेकिन अच्छे कार्य किए तो भी शक्ति मिनिमम यूज तो होगी ना, और जितनी जितनी शक्ति यूज होती है उतनी आत्मा का स्तर में थोड़ा फर्क पड़ता है नेचुरली, इसीलिए उसे त्रेता युग कहा गया है। त्रेता माना जो परफेक्शन था, संपूर्णता थी, उसमें थोड़ी कमी आ गई, त्रुटि हो गई, त्रुटि हो गई। अब आप बोलेंगे उसमें राम आए थे, वो सब सब्जेक्ट बाद में, अभी हम केवल युग को देख रहे हैं और लॉजिकली साइंटिफिकली देख रहे हैं, और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उस अनुसार ही आपको बता रहे हैं, हमारे मनुष्यों की कोई रिसर्च नहीं है इसमें, ये सब साक्षात्कार से ही चित्र बने हैं जितने भी बने हैं और ज्ञान जो है वो। अच्छा, तो उसमें क्या होगा, सब सतयुग के समान ही होगा करीबन, समय वातावरण थोड़ा सतो सामान्य जितना, माना थोड़ा फर्क, और आत्माभिमानी स्थिति माना सोल कॉन्शियस, जो हम आत्मा की स्टेज में रहे पूर्ण रीति से, उसमें थोड़ी गिरावट आती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है त्रेता युग में। हम जो एक्टर्स उस समय है आत्माएं, महसूस नहीं होता कि अरे मैं तो सतयुग से त्रेता युग में आ गई, वो पता नहीं पड़ता है। अब जो आत्माएं सतयुग में आई थी, जो सतो प्रधान स्थिति में आई थी, वो त्रेता में आने तक सतो सामान्य पे आ जाएगी, और जो आत्माएं परम धाम से डायरेक्ट त्रेता युग के समय ही नीचे आई, क्योंकि हर एक आत्मा का समय अपना अपना होगा परम धाम से आने का, तो वो आएगी सतो प्रधान स्थिति में, लेकिन वातावरण कैसा मिलेगा? सतो सामान्य। इसलिए जब तक त्रेता पूरा हो जाता है अनदर 1250 वर्ष में, वो भी सतो सामान्य स्थिति में आ जाएगी। तो माना 1250 वर्ष और 1250 वर्ष, दो युगों का 2500। अब 2500 जो ईयर्स है, 2500 साल भारत भूमि पे स्वर्गीय है। क्यों भारत भूमि कह रही हूं? क्योंकि और कोई खंड ही नहीं होगा, एक राज्य, एक खंड, एक भाषा, सब एक, एक धर्म। धर्म माना तो वहां धर्म का गायन नहीं होगा। धर्म कहां है? जीवन में। धार्मिक जीवन ही जी रहे हम, वैल्यूज, एक दूसरे को कभी दुखी नहीं देंगे, मनसा से भी नहीं, तो उसको क्या बोला जाता है? धर्म। आत्मा का धर्म क्या है? पवित्रता और शांति, उसमें ही जिएंगे हम, तो हम क्या हुए? धार्मिक, है ना। अपना धर्म छोड़ते हैं स्वधर्म, तभी हम जाकर के दुखी और अशांत होते हैं। जब तक हम अपने धर्म में स्थित है पवित्रता और शांति, तब तक दुख का सवाल ही नहीं है। अच्छे ही कर्म होंगे, बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए तो त्रेता युग में तब तक, त्रेता एंड होता है तब तक, जितनी भी आत्माएं परम धाम से आई उसकी स्थिति कहां तक पहुंचेगी? सतो सामान्य। पर ये दोनों स्वर्ग ही कहलाते हैं। चलो एक स्वर्ग, एक सेमी स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग, स्वर्ग माना शास्त्रों में क्या बताया मालूम है? स्वर्ग को कहा गया है ब्रह्मा का दिन। तो ये ब्रह्मा का दिन है ऐसे बताया जाता है, एक्चुअली स्वर्ग है, और उसी को ब्रह्मा का दिन शास्त्रों में ऐसा गायन है। फिर तो समय आगे जाएगा ना, कोई रोक थोड़ी सकता है, नहीं स्वर्गी होना चाहिए, अब ये बदलना नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। नई नई आत्माएं जुड़ती जाएंगी परम धाम से, अभी तो स्पीड बढ़ेगा ना आने वालों का, और साथ में ये जो आत्माएं सतयुग से त्रेता में आई वो भी तो आगे बढ़ेगी। अब क्या होगा? जो स्वस्तिका में हाथ था वो दूसरी दिशा में हो गया, हम वो समय पर आए, उस समय को कहा जाता है द्वापर युग। बताएंगे आपको, लेकिन वो आगे के कोर्स में बताएंगे, अभी इतना ही जानो कि आत्मा के लेवल में फर्क होता है। आत्मा का ये चक्र है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पोर्शन है, बताएंगे, लेकिन डेफिनेट आंसर है, पर अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी खाली ये समझो कि मैं कैसे चक्र में आता हूं एज अ सोल, आत्मा के रूप से, और पहले मैं कहां रहा? भारत भूमि पर, जो बहुत बड़ा और पर एक ही खंड धरती पर, और धरती वही की वही, समझा ना। अच्छा, अब है द्वापर युग। द्वापर, द्वापर ही बताता है कि स्प्लिट हो गया, समझा, माने वहां से स्वर्गीय वातावरण में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब स्वर्ग या नरक भी नहीं बोलेंगे कि नरक आ गया, नरक भी नहीं बोलेंगे। आत्मा के भीतर उतनी शक्ति अभी नहीं रहती है जिससे वो सतयुगी स्वर्ग का एहसास कर सके। फिर भी जो नई आत्माएं आएंगी परम धाम से, उनको फिर भी थोड़ा एहसास होगा, क्योंकि वो सतो प्रधान स्थिति में आएंगी, लेकिन वातावरण द्वापर युग का है, इसीलिए वो स्मृतियां बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाती है। तो इसमें शरीर के प्रति क्या होता है द्वापर युग में? बड़ा चेंज आता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति कम हो जाती है 50%। इसलिए क्या होता है? आत्मा का अटेंशन, ध्यान शरीर पर आता है, और पहली बार उसको शरीर का भान महसूस होने लगता है। जबकि सतयुग में पहनने करने के लिए कोई कमी नहीं है, शरीर का भान ही नहीं है, इतना आत्मा का तेज है। लेकिन द्वापर युग में भी आत्मा की तेज उतनी नहीं है, तो शरीर का भान आता है, फिर शरीर की तरफ आकर्षण आरंभ होता है, फिर आत्मा में 50% ही शक्ति है ना महसूस करने के लिए। अब दूसरी कॉन्शियसनेस माना आत्मा की स्मृति से अभी देह की स्मृति भी इमर्ज हो रही है तो दोनों साथ में ही, आत्मा शरीर में ही है, लेकिन आधे चक्र तक आत्मा अपनी स्मृति में रह सकते थे। अभी द्वापर युग से शरीर का भान शुरू होता है, माना कभी कभी आपको पुण्य करने का मन करेगा लेकिन कभी कभी पाप की तरफ भी जाएंगे, तो वहां से आपका एक अकाउंट चालू होगा, कौन सा, पाप और पुण्य का, समझा। और पुण्य में क्या करेंगे, क्या करते हैं, पुण्य कर्म करते माना क्या करते हैं, पूजा पाठ मंदिर बांधना, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है नहीं, कोई भी एक गांव रहता है मंदिर के बिना, तो यही सबसे पहले पुण्य कर्म शुरू होता है, मंदिर बांधना शुरू करते हैं, तब तक मंदिर ही नहीं है सोचो, और उसके आगे के जितने भी पुण्य कर्म है सभी करते जाते हैं, लेकिन साथ में शरीर का भान है। शरीर का भान आया माना सूक्ष्म रीति से विकार आत्मा के अंतर्गत महसूस होने लगता है, आत्मा के अंदर ही विकारों की महसूसता होने लगती है। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर के भान में चली गई, तो जो प्रभाव स्टार्ट होता है ना पांच तत्वों का, आत्मा को विकारों की उत्पत्ति महसूस होने लगती है, लेकिन इतनी महसूसता भी नहीं, उसको इतना नहीं पता चलता है कि ये विकार है। आज तक भी कई लोग हैं जो विकार को विकार समझते ही नहीं है, जैसे गुस्सा, कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि गुस्सा थोड़ी कोई खराब चीज है, गुस्सा तो करना पड़ता है नहीं तो काम नहीं होगा। तो ऐसे द्वापर युग में कोई को रियलाइजेशन नहीं हो रही थी कि अब हम जो कर रहे हैं उसमें विकार है। तो कौन से मुख्य विकार गिनती करते हैं शास्त्र में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हाँ? फिर धीरे धीरे और भी उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं ये परिवार के, लेकिन शुरू इनसे होता है बहुत सूक्ष्म रीति से, बहुत सूक्ष्म रीति से। तो सोचो कितना बड़ा चेंज आया सोसाइटी में, दुख का अनुभव इसीलिए यहां से ही आरंभ होता है। हम मनुष्य आत्माएं दुख का अनुभव कब करती है, आफ्टर 2500 इयर्स, 2500 साल जी के उसके बाद अनुभव होता है दुख का। और हम क्या मानते हैं, अरे ये तो दुख सुख का खेल है, माना दुख भी पहले से सुख भी पहले से, नहीं, भगवान ने एक नया ही दृश्य दिखाया कि नहीं, आप 2500 साल ऐसे जिए हो जब बिल्कुल दुख नहीं था, फिर दुख का अनुभव यहां से आरंभ होता है द्वापर युग से। देह भान के कारण तुलना करने का भाव भी आरंभ होता है, ये काला है ये गोरा है ये सुंदर है ये इतना सुंदर नहीं है, मालिकपन का भाव आने लगता है, मैं हूं ये मेरा शरीर है ये मेरा नाम है ये मेरी कंपनी है, ये ऐसे मालिकपन का भाव, मेरे बच्चे हैं, ये सब मालिकपन का भाव आ जाता है, जिसमें आत्मा के तहत नकारात्मक भावनाएं पैदा होने लगती है। क्या कारण बना नकारात्मक फीलिंग्स के लिए, मालिकपना, ये मेरा है ये मेरा है, समय और वातावरण रज्जो प्रधान बन जाता है, वहां से अज्ञान आरंभ होता है। हम कैसा जीवन जिए 2500 साल, बिल्कुल ज्ञान युक्त, लेकिन फिर अज्ञान आरंभ हुआ। अज्ञान आरंभ होगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे दिव्य लोग आएंगे परम धाम से जो नए नए उपदेश देंगे, जो हमको राह दिखाएंगे, जो हमको दिशा दिखाएंगे, ऐसे नहीं करते, प्यार प्रेम से रहते हैं, ये करना है वो करना है, ऐसे सब आत्माएं जो महान आत्माएं, धर्म आत्माएं, पुण्य आत्माएं, ये सब आएंगे, ये इसी युग में आती है और आकर के अपने नए धर्म स्थापना करती है या नए उपदेश से लोगों को इकट्ठा करती है, नया समाज बनाती है। ऐसे फिर सभी का रोल यहां से शुरू होता है। माना एक धर्म से अनेक धर्म कब होगा? जब से द्वापर युग शुरू होगा। तो खंड भी आ जाएंगे और इन सब का आने का कारण क्या हुआ? क्योंकि आत्मा ने अपनी पवित्रता को खो दिया, संपूर्ण पवित्रता को खो दिया, उससे प्रकृति में बहुत बड़ी हलचल आती है, बहुत बड़ा विनाश होता है। उसमें भारत भूमि का जो ये इतिहास था ना, देवी देवताओं का, स्वर्ग का, वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। फिर भी भारत रहता है, इसीलिए दिया इतिहास में कि जब वास्को दी गामा आए तो उनको भारत का एक पर्टिकुलर भाग मिला और वहां पर लोग सज धज के थे, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता उसने देखी, बोला रे ये देश है और इस देश में तो बहुत कुछ है। ऐसे करके फिर सबने अपनी आंख भारत भूमि पर डाली। तब तक वो छुपा था बिल्कुल, समझा? तो ऐसे ये पूरा ड्रामा, ये खेल बदलने लगा। अब विभिन्नता हो गई, अलग अलग खंड आए, अलग अलग धर्म, और भारत भूमि पर ही देखो ना, अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा। तो भी हम लोग कितने गर्व महसूस करते हैं ना भारत में। एक बार पुराना एक एडवर्टाइजमेंट आता था, देखो कि कश्मीर का भोजन, कश्मीर का ड्रेस, फिर आसाम का भोजन, आसाम का ड्रेस। आपको याद है दूरदर्शन पर एक ऐसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती थी जी? हाँ हाँ हाँ, और इतना अच्छा था ना, खुशी होती थी। भले अलग अलग था भोजन वगैरह, ड्रेस वगैरह, कल्चर, पर खुशी होती थी कि अपने भारत में कितना विभिन्न प्रकार का है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम अभी भी था कि भाई हम भारत भूमि के हैं, वो गर्व महसूस अभी भी होता था, समझा? इतना बुरा हाल नहीं था कि एक दूसरे का हम विरोध करें जो आज है, आज की तारीख में, है ना? तो इसीलिए द्वापर युग की ये विशेषता थी। पर वो समय भी तो जाएगा ना, और 1250 वर्ष बीतेंगे, उसके बाद बॉल एकदम थोड़ा नीचे के स्तर पर पहुंच जाएगा। उसको कहते हैं कलयुग, क्लह क्लेश का युग और प्रॉपर नरक। भले कोई अपने महल में भी रहता होगा पर पूरा वातावरण प्रॉपर नर्क, समझा? मानेंगे नहीं मानेंगे कि हम अभी नर्क में जी रहे हैं? नर्क मरने के बाद नहीं होता है, जीते जी हम अपनी धरती को नर्क समान बना देते हैं। आप एक गांव भी शराब के बिना नहीं रहता, सोचो, एक शहर ड्रग्स के बिना नहीं रहता, बुरे बुरे कार्य के बिना नहीं रहता, अच्छे अच्छे घरों के लोग किस किस में फंसे हुए हैं चीजों में, आप मान नहीं सकते। इतनी गंदी दुनिया, तो क्या भारत उससे अलग है? जरा भी नहीं है। भारत तो सबसे पुरानी संस्कृति, उसका क्या हाल होगा, है कि नहीं? भले अभी एक चमक आ रही है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसके पहले वो नहीं चमक देता है, ऐसे नहीं, बॉम्ब हम फोड़ते ना तो पहले चमक आती है, फिर हम भागते हैं दूर, फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ऐसे अभी चमक है और सभी जो है ना प्रयत्न कर रहे हैं, हम ऐसा करें वैसा करें। भारत विश्व गुरु बनेगा जरूर, ये भी गलत बात नहीं है, विश्व गुरु बनेगा जरूर। क्यों? वही तो नंबर वन में था, तो जाने से पहले वो नंबर वन में आएगा ना, आएगा ना। तो इसीलिए आज एक्चुअली देखो ना आप, सत्य स्वरूप क्या है? विकारों का राज्य है सारे संसार पर। ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ ना ईरान का और यूएस का, इसके पीछे बहुत गंदा कारण था। उस गंदे कारण को छिपाने के लिए युद्ध किया गया, लेकिन हम तो इनोसेंट, सब पब्लिक, जब अभी तो मीडिया इतनी है इसीलिए मालूम पड़ रहा है, पहले तो कितना हुआ होगा हमको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। हम तो बस अपने जीवन में खुशहाली रीति से जीते थे, अभी पता चला कितना गंदा खेल चल रहा है। तो ये विकारों का राज्य है, खाली भारत में नहीं, सारे संसार में। इसलिए उसको रावण का रूप दिया है। दशहरा रावण माना, 10 माथे हैं विकार को, 5 माथे बताए ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अभी और 5 माथा हो गया, भय, फिर द्वेष, ईर्ष्या, आलस्य, अलबेलापन, ये 5 और जुड़ गए हैं। एक निकालने की कोशिश करो दूसरा आएगा, दूसरा निकालने की कोशिश करो पहला वापस आएगा, नो एंड। जब तक उसकी नाभि में तीर नहीं मारा तब तक ये रावण नहीं मरेगा। और नाभि है फिर से हमको देह अभिमान को बदल के आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। कितनी बार प्रैक्टिस करने पड़ेगा दिन में, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, काम करते करते, ऐसा नहीं कोई झाड़ के नीचे बैठ जाओ समाधि लेके, नहीं होगा। कार्य करते करते आपको अपने परिवर्तन के लिए जुड़ना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा। और ये जो भान अभिमान अहंकार में आ गए हैं ना चमड़ी के, उसको परिवर्तन करना होगा, सबको करना होगा, भले आप जितने भी स्तर पर करो, बाकी का वो देख लेगा, लेकिन करना हमको ही पड़ेगा। क्योंकि खेल किसका है, भगवान का है या हमारा है? हमारा है, तो रिस्पॉन्सिबल हमें, हमें ही करना होगा। भगवान खाली पूरा रास्ता बताएगा, शक्ति देगा, पर करना हमको ही पड़ेगा। कर्म से ही परिवर्तन आएगा, अपनी मनसा से, संकल्पों से परिवर्तन आएगा। सच्चा सुख किसको कहा जाता है, उसका कोई ज्ञान ही नहीं है अभी, नो नॉलेज। हैप्पीनेस क्या है, सुख क्या है, किसी को पता ही नहीं है, अपनी अपनी रीति से बोलते रहते हैं। छोटी छोटी बातों में क्लेश होगा, फैमिली मैटर्स में ही देख लो, दूसरे दिन लगता है अरे कोई बात तो थी नहीं, इतना झगड़ा क्यों किया हमने। छोटी छोटी बातें, मतलब बुद्धि काम ही नहीं करती है। दुनिया में हर सिस्टम बिखर जाती है, छोटे छोटे हिस्सों में बट जाती है हर सिस्टम। वो सिस्टम सुख कहां से देगी? हर देश कहता हमने सिस्टम बनाई, सिस्टम बनाई, और फिर पब्लिक क्या कहती, सिस्टम किस काम की है, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। इस प्रकार का पूरा वातावरण कलयुग में होता है। अब आप बताइए, सज्जन दिखता हुआ व्यक्ति क्या विकारों से काम नहीं कर रहा है? सब कर रहे हैं, खाली बाहर की आदतों की बात नहीं है, आंतरिक आदतों की भी बात है। गिर चुके हैं आत्मा के स्तर में। अगर हम ये रियलाइज करेंगे ना, तो वहां बैठने की जरूरत नहीं है, वहां से उठना है। और हम अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए परमात्मा अपना हाथ देकर हमें उठाने के लिए आया है। ताली तो बजाओ। किसके लिए ताली बजाई? परमात्मा के लिए, कि हम जो नीचे एकदम बॉल गिर चुका है, अब परमात्मा अपने को उठाने के लिए आया है। कोई मनुष्य की ताकत ही नहीं है, कोई मनुष्य क्या करेगा। शिव बाबा को आना ही है इसी समय, बीच में नहीं आता है, कहते मेरे सुनेगा कौन। अभी भी नहीं कोई सुन रहा है, तो पहले तो बिल्कुल ही नहीं सुनते, तो इसलिए कहते मैं आता ही तब हूं जब कलयुग का अंत, माना कलयुग की अवधि 1250 वर्ष, वो जब पूरी होने को आती है तभी परमात्मा इस धरा पर आते हैं। दिख रहे है? दिख रहे हैं परमात्मा, आत्मा दिखती है, आत्मा दिखती है, तो फिर परमात्मा क्यों दिखेंगे। वो महसूस करने की शक्ति है, आप मिल भी सकते हो उनको, लेकिन जब तक आपने आत्मा खुद को रियलाइज नहीं किया तब तक उनको रियलाइज नहीं कर सकते। वो ही विधि है आत्मा से परमात्मा तक। शरीर का भान आपको, वो वायर होता है ना, तो वायर के ऊपर रबर नहीं लगा होता है, शरीर वैसा है, तो अगर रबर आप काटेंगे नहीं तो वायर जोड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ये शरीर का भान तब तक है तब तक आप मंदिर में ही जाके खुश रहो, लेकिन जब आत्मा का भान प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से आप कर सकते हो। ये उन्होंने इनविटेशन दिया है, अपने को आमंत्रण दिया है कि यही समय है जब आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो अपने मूलभूत परिवर्तन के लिए। कौन सा मूलभूत परिवर्तन? आत्मा परिवर्तन, आत्मिक परिवर्तन। थैंक यू। आत्मिक परिवर्तन सुना? हाँ, तो इसीलिए अभी हम क्या देखते हैं, सब हेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, सब हर चीज के पीछे भाग रहे हैं, शरीर के संबंधित जागृति आ रही है। अरे हमको बीमार नहीं पड़ना है, अरे हमको ऐसा नहीं, बहुत खर्चा हो रहा है, हमको अपना ध्यान रखना चाहिए करके सभी डाइट पे जा रहे हैं, सभी अलग अलग प्रकार के टॉक्सिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? है ना, घर का खाना है, अभी घर का खाना है, बाहर होटल में बिल्कुल खाना नहीं, ऐसे ऐसे सोच रहे सब कि घर का खाने से बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे ऐसे सब जागृति आ रही है, लेकिन शरीर की ही, अभी तक आत्मा की रीति से हम अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। जब इसकी जागृति होगी तो वो विशाल परिवर्तन हम ही परमात्मा की मदद से लाएंगे और लाने वाले हैं, क्योंकि आप रोक ही नहीं सकते, आप रोक ही नहीं सकते, ये प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विधि को कोई नहीं रोक सकता। आप मानो कि नहीं मानो, जो चीज होने वाली है वो होने वाली ही है, आप करो न करो आपकी मर्जी है, लेकिन परमात्मा का खुला द्वार है, उनका बल हर एक आत्मा के लिए है, जो चाहे उसको वो मदद कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अपने विचारों, बोल, कर्म, भोजन, कपड़े आदि सब चुनावों पर पूरा प्रभाव पड़ता है, कलयुग में पूरा प्रभाव पड़ता है, समझा? कोई भी संतुष्टता देता ही नहीं है, न भोजन न कपड़ा न कुछ, डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टता पूरे वातावरण में, समय और वातावरण पूरा तमो प्रधान। तीरथ पर जा रहे हैं, अच्छे भले एक्सीडेंट हो गया है, ये सब समाचार आपको कलयुग के अंत में मिलेंगे। जब जनगणना जो दुख का कारण बन जाता है, वो टू मच हो जाता है पॉपुलेशन पूरे जगत में, तो इसीलिए कलयुग माना हम अभी कौन से जीवन में जी रहे हैं, नरकीय जीवन में जी रहे हैं। भले हम कितने भी सोफिस्टिकेटेड लगे, अच्छे कपड़े पहने, पर हम तो नरक में ही जी रहे हैं, जहां विकारों का राज्य है। सुख क्या है वो तो हमको पता भी नहीं है, लेकिन अच्छा समय ये है कि दुनिया की घड़ी में चारों युग पार करने के बाद 2 मिनट बाकी है 12 बजने में, वो गुड न्यूज है। 2 मिनट बाकी है दुनिया की घड़ी में, और वही समय है जब परमात्मा का दिव्य अवतरण हम आत्माओं को फिर से अपने उच्च स्तर तक ले जाने के लिए होता है जी। तो बहुत अंदर से आत्मा को ये आना चाहिए, शुक्रिया आना चाहिए, गदगद हो जानी चाहिए आत्मा की, अब मेरे जो बाबा है ना आत्मा के, वो आ गए हैं, तो अब उनके साथ मुझे अपने को परिवर्तन करना है। मैं परिवर्तन करूंगा तो मेरा परिवार भी करेगा, मेरा परिवार करेगा तो समाज भी करेगा, दुनिया करेगी। हमको तो पूरा निश्चय है कि एक स्व परिवर्तन से सारा विश्व परिवर्तन होता है, इसलिए हमको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी दूसरों को नहीं देखो कर कोई करेगा नहीं करेगा, मुझे करना है। और इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं, हमको तो आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाना है, तो वो 2 मिनट का जो समय है ना, उसको भी एक युग कहते हैं, भले छोटा सा युग है कंपेयर टू 1250 ईयर्स, लेकिन बहुत कल्याणकारी है। वो छोटे से समय में ही जादूगरी हो जाती है, क्योंकि शक्ति परमात्मा की है ना, इसीलिए इतने छोटे समय में भी संगम युग कहा जाता है, माना कलयुग और सतयुग का संगम जहां होता है। ये मैंने खाली दृश्य दिखाया आपको, पहला चित्र सतयुग का है, देख लो बराबर, कोई कमी नहीं। दूसरा भी त्रेता युग है ब्लू कलर का। तीसरा है द्वापर युग, जब अलग अलग प्रकार के धर्म और पुण्यात्माएं धर्मात्माएं सब आते हैं अपना कार्य करने के लिए। माना उनका भी जरूरी है, कोई खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट हमको इशारा तो दे रहे हैं कि आप ऐसे नहीं थे, आप अच्छे थे, अपने आप को रियलाइज करो, अच्छे कर्म करो, प्यार करो, इतना यही रियलाइज करने के लिए आते हैं वो। लेकिन लास्ट में कलयुग का सीन क्या हो जाता है, लोग नहीं समझ पाते हैं भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, हिंदू सिख भाई भाई है, चीनी हिंदू भाई भाई, नहीं समझते हैं तो राइट्स हो जाती है ना। राइट्स माना क्या बोलते हैं उसको, अंदर की लड़ाइयां, दंगे, दंगे फसाद हो जाते हैं ना, तो वो अभी बहुत बढ़ता जाएगा। कितना भी हम कोशिश करेंगे ना, लेकिन जो वो वृत्ति बन गई है ना, उससे वो सीन भी होना है। जैसे आत्मा का स्तर बदलना है ना, ऐसे ये भी प्रकृति, ये धरती का ये सीन भी है, ये भी होना है। और उसके साथ साथ बॉम्ब जो न्यूक्लियर वॉर सब बनाया गया है तो थोड़ी यूज नहीं करेंगे, इतना बना के कहाँ रखेंगे, सागर के नीचे रखेंगे तो भी होगा, हर जगह से होगा। तो इसलिए वो भी सीन है लास्ट में परिवर्तन का। और फिर लास्ट में प्रकृति, पांचों ही तत्व मिलके पूरी धरती को साफ कर देंगे, नहीं तो सतयुग कैसे आएगा। इसीलिए तीनों रीति से जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, उसका विनाश होगा। आत्मा कभी मरती है नहीं, तो आत्मा तो ट्रांसफर हो जाएगी परमधाम में, लेकिन शरीरों का और पूरे धरती का जो ऊपर का पूरा जो तमो प्रधान हो गया है वो सब सफाई हो जाएगी, ताकि सतयुग में फिर से धरती नहीं हो जाती है। और ये चक्र अनादि काल से अनादि रूप से चलता रहता। अभी आपको पसंद है नहीं पसंद है वो तो अपने हाथ में है ही नहीं ना, ये प्रकृति का खेल है। भगवान भी कहता है, मैं भी कहता हूं, मुझे वो बता बहुत प्यारा है क्योंकि मैंने नहीं रचा है, ये प्राकृतिक है, तो मैं भी प्राकृतिक हूं वो कहते हैं, इसलिए मुझे पसंद है। आपको पसंद है पूछता है, तो हम आप कहेंगे हमने तो आज ही सुना, हम कैसे कहें हमको पसंद है कि नहीं, हम सोचेंगे उसके बाद कहेंगे। लेकिन कोई कोई यहां बैठा है जो तुरंत भगवान को कहेगा हां मुझे भी पसंद है, मुझे भी ये उच्च स्तर पर जाने की उमंग उत्साह आ रहा है और मुझे भी अपने को परिवर्तन करना है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। अच्छा, तो ये संगम युग, परिवर्तनशील युग, सतयुग और कलयुग का संगम। हाँ, इसमें क्या होगा, विकारों को मूल्यों में परिवर्तन करने का कार्य भले एक व्यक्ति से आरंभ होके सारे समाज तक उसका प्रभाव होगा। ये कार्य आरंभ होता है कलयुग के अंत में, कोई भी एक व्यक्ति से आरंभ होकर सारे समाज तक उसका प्रभाव होगा। दूसरा, स्वयं परमात्मा ईश्वर की भूमिका यहां धरती पर आरंभ होती है, भले वो अपने जैसा खुद का शरीर नहीं ले सकते हैं, तभी तो परमात्मा है ना, हम तो अपना शरीर लेते हैं, लेकिन परमात्मा अपना शरीर माना मां के गर्भ में जन्म नहीं ले सकते हैं, तो उनकी विधि आने को कहा जाता है अवतरण, माना किसी के शरीर में प्रवेश करके फिर वो अपना कार्य करते हैं। और जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उसी को ब्रह्मा जी का नाम मिलता है। आपको अगर किसी को भी पता है ब्रह्मा जी का जन्म कहां कैसे हुआ तो बताइए, अगर किसी के पास भी उसके जन्म का रियल ट्रुथ है तो बताओ, नहीं है ना। एक चित्र दिखाते खाली कि विष्णु की नाभि में से एक बूढ़े ब्रह्मा जी जन्म हुआ कमल के पुष्प पर, कभी उनको छोटे बच्चे के रूप में नहीं दिखाया, बाकी सब देवताओं को यंग दिखाते हैं लेकिन ब्रह्मा जी बूढ़े है, वृद्ध है। तो ये क्या है रियलिटी, वो हमें परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। कि मैं एक साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं उनके वानप्रस्थ अवस्था में, माना 60 इयर्स के बाद, और मैं उनके द्वारा पूरे संसार को फिर से, माना आत्माओं को, ये नॉलेज देने के लिए आता हूं, पुराने चक्र को फिर से नया बनाने। तभी तो हम नहीं चेंज होंगे तो पुराना चक्र नया कैसे बनेगा। तो परमात्मा कहते मेरे को प्रकृति को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो जानती है, बहुत नॉलेजफुल है, वो अपने आप काम करती है, मुझे तो बस आप सबसे काम करना होता है, आप सबकी स्मृति का ताला खोलना होता है कि भाई आप आत्मा हो और आप इतने ऊंचे स्तर सतो प्रधान स्थिति में आए थे, अब फिर से बनना है। तो समय और पर्यावरण हमें बदलने के लिए अब आवाहन कर रहा है। लगता है आपको ऐसा जो जो हो रहा है दुनिया में, आप लोगों के साथ भी आपको लगता है कोई बड़ा आवाहन, बड़ा परिवर्तन का आवाहन हो रहा है? कई चीजें बिल्कुल अपने कंट्रोल से बाहर जा रही है। हाँ, अब कोई आके कुछ करे ऐसी ही अभिलाषा होती है। दुनिया रूपी घड़ी भी हमें यही इशारा दे रही है। अमेरिका में ऑलरेडी एक घड़ी लग चुकी है, रियल घड़ी, जो 7 साल की है और वो उल्टी चल रही है। न्यूयॉर्क में वो घड़ी लग चुकी है, 7 साल की है, साइंटिस्ट ने रखी है वो घड़ी, और वो उल्टी चलती है, बना 7 साल से धीरे धीरे 6 साल होगा, फिर धीरे धीरे 5 साल होगा, माना उतना ही समय हमारे पास है। वो कहना चाहते हैं अगर हमको कुछ भी अच्छा करना है आत्मा के लेवल पर, और कार्य करते हुए, कोई साधु संत बन के नहीं, तो 7 साल है हमारे पास, ये साइंटिस्ट ने बोला है। भगवान तो कहते हैं आज का ही दिन है, कल क्या होगा वो भी हमको पता नहीं, आज का ही दिन हमारे हाथ में है और ये घड़ी अपने हाथ में है। ये घड़ी पे मैं क्या सोच रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही बीज बनेगा मेरे पुरुषार्थ का, मेरी दिशा का, इस पल में मैं क्या सोच रहा हूं। तो ये बहुत सुंदर पिक्चर है जिसमें जो बटरफ्लाई होता है वो पहले ना उसका इतना सुंदर स्वरूप नहीं होता है जब छोटा होता है, तभी मना एक कीड़े के जैसा स्वरूप होता है, फिर जब वो ये बन जाता है, बटरफ्लाई बन जाता है, तो कितना सुंदर होता है, अलग अलग रंगों का, बहुत सुंदर हो जाता है। हाँ, कितना सुंदर हो जाता है। तो कितना फर्क है ना रूपांतर में, बस यही फर्क होगा हमारा भी, अगर हम ये भगवान की श्रीमत को सुन के समझ के अपना जीवन करेंगे अभी। तो जो साइंटिस्ट ने बोला है 7 साल के अंदर हमारा स्वरूप भी बहुत सुंदर होता जाएगा। अभी तो सिंपल रहेगा, हाँ, सादगी वाला रहेगा, लेकिन प्रेपरेशन हमारी बहुत बड़ी है। सत्युग त्रेतायुग कितनी बड़ी है, और परम धाम भी जाना है ना अपने घर। हाँ, बड़ी यात्रा करके जब वापस लौटते हो तो घर आते समय कैसा फील होता है? हा हा, घर के दाल चावल भी बहुत अच्छे लगेंगे, ऐसा लगता है ना, बोले कितने 5-स्टार होटल भी खाया होगा। ऐसी फीलिंग अभी आती है कि अभी परम धाम जाएंगे, जहां से हम आए थे, अपना घर, आत्मा का निजी धाम, अपने पिता के पास, अपनी फैमिली में, हम सब मिलकर एटलीस्ट जो भी समय बिताएंगे वहां, ज्यादा तो रह नहीं सकेंगे क्योंकि आत्मा का संस्कार ही नहीं है ज्यादा ऐसे एकदम फ्री रहना, उसको वापस खेलने के लिए आना ही है, इसीलिए वो अपने समय अंतर पर वापस अपने अलग अलग। आपको रियलाइज हुआ होगा कि मैं कौन से युग में आया होगा परम धाम से, अगर नहीं अभी रियलाइज हुआ है तो इसके ऊपर सोचना, अब फील करना कि सारे सृष्टि चक्र में मैं परम धाम से कब आया होगा, सत्युग में आया होगा कि त्रेता में कि द्वापर में कि कलयुग में, सीधा मेरे को क्या फील हो रहा है वो आप उसका मेडिटेशन जरूर करना। और अपने सामने ये चित्र रखना सृष्टि चक्र का, सृष्टि चक्र का ये जो चित्र है ना इधर, ये वाला, ये सामने रखना, फिर मेडिटेशन करते हुए देखना कि मैं कौन से युग में आया होऊंगा, वही फिर आना है ना वापस जिस युग में आए होंगे, तो प्रिपेरेशन होगा ना, बुरा नहीं है जो भी युग में आओ, जो भी युग में आओ, अपनी रियलाइजेशन से होना चाहिए।
आपकी जो रियलाइजेशन होगी उतना आप एफर्ट करके वापस उस युग के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, ये वैरायटी है ड्रामा का। अच्छा बुरा है ड्रामा में, लेकिन दोनों का अनुभव सबको होता है, लेकिन आपके ऊपर है। मुझे ज्यादा सुख का अनुभव करना है और कम दुख का अनुभव करना है, तो अभी ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर आपको दोनों इक्वल चाहिए तो वैसा पुरुषार्थ होगा, अगर आपको दुख ज्यादा चाहिए और सुख कम चाहिए तो फिर वैसा पुरुषार्थ होगा। आपके डिसीशन पर होगा, क्योंकि आपका डिसीशन कैसा होगा, जो लास्ट 5000 वर्ष पहले हुआ होगा वही डिसीशन आप वापस लेंगे। आप लोग इधर भी पहले 5000 वर्ष पहले यहां बैठे थे ऐसे ही, और मैं आपको ऐसे ही 10 बजे के सेशन में मिली थी, क्योंकि लास्ट चक्र में हम ऐसे ही मिले थे। तो आगे का जो नया चक्र शुरू होगा उसमें फिर से हम इसी समय ऐसे ही इन्हीं कपड़ों में यही स्थान पर मिलेंगे। इसीलिए लास्ट में ये बताया है कि ये जो वर्ल्ड साइकिल है, माना सृष्टि का चक्र है, ये अनादि काल से चलता रहता है और अनादि काल से चलता रहेगा, और कोई भी इस चक्र को नहीं बनाता है, कोई भी नहीं, भगवान भी नहीं। ये प्राकृतिक है, नेचर, जैसे धरती नेचर है ना, ऐसे ये भी नेचर है सृष्टि चक्र। और इसीलिए किसी के पास शक्ति नहीं है इस चक्र को बंद करने की या मारने की, खत्म करने की। ठीक है, को हाँ प्रश्न पूछ रहे थे। अच्छा, आपको पता है नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है? नहीं पता ना, भले डेस्टिन्ड है पर आपको पता है नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है? क्या शायद बारिश भी हो जाए बाहर? नहीं पता ना। तो जब वो चीज आपको अभी अभी आपकी स्मृति में नहीं पता है तो फिर क्यों सोचने का कि वो फिक्स्ड है? क्या फिक्स्ड है? पता तो है नहीं, इसीलिए करते जाना है। जैसे करते जाओगे तब पता चलेगा आपको कि क्या फिक्स है कि नहीं। पहले से कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी चीज फिक्स है? हाँ ये पता है कि 5000 वर्ष पहले हम ऐसे मिले थे, हम यहां आए थे, बस इतना ही। बाकी कुछ भी याद है आपको इस जन्म में? कोई भी जन्म का याद है? तो ये ड्रामा की खूबसूरती है जो हमें ये सब याद नहीं कराती है वो, नहीं तो हम पुरुषार्थ कभी नहीं करेंगे। हमारा कर्म है ना करना, सृष्टि पर आते हैं तो हमको कर्म करना ही है। इसलिए कृष्ण का बताते हैं गीता में, कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत रखो। अब जैसे आपने बोला फल तो फिक्स है ना, पर उसने कहा फल की इच्छा नहीं रखो, तुम कर्म पे ध्यान दो। ये नियम है ड्रामा का कि भले फल फिक्स्ड है पर आप कर्म पे ध्यान दो। अब कितनी रीति से लोगों ने हमको समझाने की कोशिश की है कि आप जब कर लोगे तो आप देख पाओगे कि हाँ ये फिक्स था। अभी आज जो सेशन में नहीं आए हैं, घूमने गए हैं सपोज, या चले गए वापस घर, वो फिक्स हो गया ना उनका, करने के बाद फिक्स होता है। उसके पहले मुझे मालूम था सेशन में कितने लोग आएंगे, मैं कैसे बोलूं ड्रामा फिक्स है? अभी बोल सकती हूं कि ये ड्रामा फिक्स है। नेक्स्ट कल्प में, कल्प बोलते हैं, या नेक्स्ट सृष्टि के चक्र में हम सब इतने ही इस सेशन में मिलेंगे, है कि नहीं? अपनी खुशी तो मनाएं, दूसरे का देखने जाएंगे सोचने जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो अपनी खुशी मनानी है। हाँ सबने अच्छी तरह सुना ना? हाँ भले बाद में वापस रिवाइज करना सेंटर पर वहां जाकर के, कि नहीं हमको 2-3 बार सुनाओ, और अब मोबाइल में भी आता है उसमें भी रिवाइज कर सकते। हाँ
आपने तो ये सृष्टि चक्र बहुत आसान भाषा में पढ़ाया। अभी मेरा सवाल ये है, अभी कली चल रहा है, संगम चल रहा है, तो सारे के सारे समृद्धि जो है वो जो समृद्धि नेचुरल रिसोर्स पर आधारित है।
हाँ
हम लोगों ने पूरा जगत में ये नेचुरल रिसोर्सेस, चाहे वो पेड़ हो बाकी कुछ हो, ये सब खत्म कर रहे हैं हम
जी जी।
तो हम जब सृष्टि सतयुग आएगा तब ये नेचुरल रिसोर्स रहेगा क्या?
देखिए एक झाड़ मरने को तैयार है, ठीक है, तो प्राकृतिक नियम क्या है मालूम है? वो एक छोड़ छोड़ता है नया। हाँ, जब तक वो छोड़ नहीं छोड़ेगा ना नया वाला, वो मरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, फिर वो नया ऑटोमेटिकली उगने लगता है। ऐसे जब ये पांच तत्वों का खेल चलेगा ना परिवर्तन का धरती पर, तब पूरा माना वो जरा सिस्टम जो है ना खानों का, खेतों का, वो एकदम नया हो जाएगा। हाँ, वो एकदम नया हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति अपनी रीति से तैयारी करती है, वो प्रकृति का काम है। और अभी जो हम करें ना, मैं कई बार सोचती हूँ, लोग कहते हैं अभी रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है। जब हम एरोप्लेन से जाते हैं ना, तो कितनी सारी जगह खाली दिखती है, हैं? मैंने कहा इतनी जगह तो सब खाली है, क्यों बोलते हैं कि कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं? पर वो बैलेंस रखने के लिए, धरती पे जो बैलेंस रखना पड़ता है ना, कि भाई सब जगह ही हम जाके रह लेंगे तो फिर वो बैलेंस नहीं रहेगा ना। कितना कारोबार होता है, हम जाते हैं तो सारा बदल देते हैं, सब कुछ कॉन्क्रीट जंगल बना देते हैं। तो इसीलिए बैलेंस रखने के लिए कहा जाता है कि भाई उतनी ही जगह आपको मिलेगी, उससे अधिक आपको जगह नहीं मिलेगी। तो अभी क्या कर रहा है गवर्नमेंट? अभी धीरे 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 आगे बढ़ाता जा रहा है। पूना देखो, ओ माय गॉड, पहचानने में नहीं आ रहा है, इधर से आगे बढ़ रहा है, इधर से आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही मुंबई आप देखो, कितना आगे बढ़ा रहे, कितना बढ़ाएंगे, सागर को सुखा रहे और कोस्टल रोड्स बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, जैसे सी लिंक वगैरह बन रही है। क्यों? क्योंकि मुंबई में आने जाने के लिए जगह नहीं है। अंडरग्राउंड, जहां मिट्टी पे पूरा मुंबई है, वहां अंडरग्राउंड मेट्रो बना रहे हैं। ये है मनुष्य जो अपने को बुद्धिजीवी समझते हैं, वो करते रहेंगे एंड तक। कहां तक? एक लहराई की मुंबई में क्या होगा? सब मतलब प्रकृति के सामने आप नहीं जा सकते, पूरा मुंबई एक ही लहर में खत्म हो सकता है सागर की। आप कितना भी कर लो, करने दो, आपको भी आता होगा हम ये करें वो करें, करो एंड तक, कर्म तो करना ही है, लेकिन ये तो ध्यान में रखो, चक्र को तो ध्यान में रखो, इतना तो ज्ञान सहित करो और ऐसे बीज बो जो आपको सतयुग त्रेता में काम आए। ऐसे संस्कार रूपी बीज भरो जो वी कैन कंटिन्यू वेल सतयुग और त्रेता युग में। अगर आपने वो जीत पाली तो आपने ड्रामा पर जीत पाली, पर आपने सोचा कि अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं इधर रहूं उधर रहूं क्या फर्क पड़ता है, तो आप उतना ही वो ले सकेंगे ड्रामा से, है ना। और दूसरा मीनिंग ड्रामा का है कि जब कोई चीज बीत जाती है ना, फिर उसको फुल स्टॉप लगाओ, बिंदु बिंदु लगाओ, ये ड्रामा कहता है कि बिंदु लगाओ। ऐसा नहीं पांच साल पहले हुई चीज को भी अभी नहीं, वो कह रहे थे शक्तिराज भाई हाथ ऐसे रख के, कितने सालों का अभी तक मन में है, कितने सालों का, तो आप उसको पास्ट करो, फुल स्टॉप लगाना ये ड्रामा सिखाता है कि अभी कब वापस आएगा वो परिस्थिति 5000 वर्ष के बाद। तो मैं क्यों सोच रही हूं, मैं भी छोड़ दू ना अभी के लिए, तो कितने हल्के रह सकते हैं अपन, पर हम पकड़ के रखते हैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन पर क्वेश्चन, फुल स्टॉप, ये ड्रामा सिखाता है। ड्रामा सिखाता है तीनों कालों को सोचो पहले मन में, फिर कोई भी निर्णय लो। और ड्रामा सिखाता है कि अभी एक जन्म की स्मृति में नहीं, ये 5000 वर्ष के साइकिल की स्मृति में रहना है। तो आपकी बुद्धि जब विशाल हो जाएगी, बेहद में आ जाएगी ना, तो आप छोटी छोटी बातों से रंज नहीं होंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे। जैसे नहीं, वो एक स्टोरी आई थी कि एक बूढ़ी माता जी बस में ट्रैवल कर रही थी और बस में काफी भीड़ थी, तो एक और व्यक्ति आके उसके बाजू में बैठ जाता है और फिर कुछ ना कुछ करता रहता है, आवाज करेगा, फोन पे जोर से बोलेगा, खिसकेगा, ऐसे करेगा, डिस्टर्बिंग था। तो तीसरा व्यक्ति देख रहा था, तो उसने कहा ये कितना डिस्टर्बिंग व्यक्ति आपके बाजू में आके बैठा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? तो कहती है चार स्टॉप के बाद तो मुझे भी उतरना है, फिर मैं क्यों झंझट लूं अपने सिर पे, अभी टेम्पररी है ना, चार स्टॉप की बात है, उसके बाद मैं भी उतरने वाली हूं, फिर तो मैं थोड़ी उसको याद रखूंगी। इससे मैं शांत रही, ऐसे ही अभी हमारे साथ कितने अलग अलग संस्कार वाले व्यक्ति हैं। आप ये सोचो कि अभी थोड़े ही स्टॉप है, फिर तो परमधाम जाना है, तो मैं उतने समय को क्यों बिगाड़ू अपना, थोड़ी थोड़ी चर्चा, थोड़ी थोड़ी आर्ग्यूमेंट उस रीति से। तो जितना हो सके छोटी छोटी बातों को फुल स्टॉप लगाना सीख लो, नहीं तो आपका थोड़ा भी समय जो है ना वो भी वेस्ट जाएगा। और आपको देख के चलो आपके हस्बैंड नहीं सीखे कि आपके बच्चे नहीं सीखे, लेकिन कोई तो सीखेगा, कोई तो दो चार सीखेंगे आपको देख के, तो ये भी अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि आप जिसकी अपेक्षा रखते हो वो ही बदले। ड्रामा का ज्ञान है ना हमें बहुत विशाल बना देता है, और किसी से अटैचमेंट भी नहीं रखने देता है ड्रामा। हम कितने परिवार में आए होंगे सोचो 5000 वर्ष में, ये कोई एक ही परिवार थोड़ी है, कितने अलग अलग देशों में गए होंगे, कितने परिवार वाले अभी बैठे ना, हम सब कोई ना कोई परिवार में साथ में आए होंगे। है अटैचमेंट आपको मेरे से? नहीं है। ऐसे ही इस समय के परिवार से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट इज ओनली वन फैमिली। ऐसे तो कितनी फैमिलीज हम लोग रहे हैं साथ में। तो ड्रामा हमको ये सब बताता है कि अपनी बुद्धि को ऐसे एकदम ये संकुचित मत करो, उसको और विशाल बनाओ। तो आपको कभी महसूस होगा, कभी किधर गए होंगे और कोई मिला होगा ना, तो आपको लगेगा अरे तो कितना अपना सा लग रहा था, मेरे परिवार में भी ऐसा नहीं एहसास होता है, इसके साथ हुआ। मिलेगा कोई ना कोई जन्म के रिश्ता वाला। तो कीप योर माइंड ओपन, बुद्धि को विशाल रखो, मन को खुला रखो, क्योंकि ये ड्रामा हमें यही सिखाता है। संकुचित मन दुखी होता है, ड्रामा पे अटल रहने वाला मन हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। ओके, ओम शांति। अपने पास
ओम शांति,
अपने पास 5 मिनट है,
एक छोटा सा प्रश्न है।
हाँ जी,
छोटा सा।
हाँ जी,
ओम शांति।
जी ओम शांति
दी। ये बताओ कि राज योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्या तभी आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, या जो सुपर पावर ने हमें जो इस धरती पे ड्यूटी दे रखी है,
जी जी,
जिस काम के लिए हम आए हैं, हम देख रहे हैं, क्या हम उस काम को बड़ा ऑनेस्टली करें, अपने काम पे टाइम से जाएं, किसी का बुरा ना करें, क्या तब भी हमें आत्मा
नहीं,
का
वो परमात्मा वही बता रहा है भगवान। राजयोग माना क्या, जो आपने अभी बताया ना, दैट इज राजयोग। हाँ, कि आप अपना कार्य व्यवहार करो, लेकिन चेंज योर वैल्यूज, बी द रियल पर्सन दैट यू आर, जो आत्मा के गुण है उसी से कार्य करो। तो आपने बोला ना ऑनेस्टली, ऑनेस्टली माना आत्मा जो ट्रुथ है उसकी वैल्यू है ऑनेस्ट।
क्या मतलब, अब घर जैसे रहते हैं हम, गौ माता को पूजते हैं, उसको इस सवेरे चपाती खिलाते रहें और अपने काम पे जाएं, तब भी हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा?
देखिए, आपने आत्मा की प्रैक्टिस की, लेकिन आपने गौ माता को तो खिलाया, पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म। अब पुण्य के साथ पाप भी होता रहता है, क्योंकि वही गौ माता को कोई वहां लेके जाएगा कत्लखाने में और वहां उसको मारेंगे, है कि नहीं? आपको तो नहीं पता ना क्या होगा उस गौ माता का, आपने तो रोटी खिला दी, तो साथ में पाप आत्मा भी, पाप कर्म भी होता जाता है। इसीलिए
हर कोई सवारी अपने समान के जिम्मेवार होती है, तो हम अपने पुण्य करें ना।
नहीं नहीं, आपने पुण्य कर्म किया, मैं नहीं बोल रही हूँ नहीं किया, पर वही गौ माता का कत्ल खाने में ले जाने के लिए कोई तो जिम्मेवार होगा। एक बात बता रही हूँ, सुनो सुनो, एक मिनट। तो हर एक अपनी रीति से कर्म करते रहते हैं, है ना? पर जब आप आत्मा का अभ्यास करेंगे तो सबसे पहला अटेंशन आपका अपने ऊपर जाएगा, पहले कि मैं क्या कर रहा हूं अपने लिए। अगर आप अपने लिए वो नहीं कर रहे जो आप गौ माता के लिए करना चाहते हैं, देन इट इज नॉट राजयोगा। पहले आप अपने लिए करो, फिर आप किसी के लिए भी करो। मना हर चीज आप अपने कल्याण का पहला सोचो, कि मैं जो अपने लिए कर रहा हूं, अगर अकेला भी हूं तो क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर आपका कॉन्शियस कहता है नहीं, मैं अकेला रहता हूं तो भी मैं अपने मूल्यों को नहीं भूलता हूं, मैं सच्चाई से करता हूं, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, तो फिर आप गौ माता को खिलाओ, चींटियों को खिलाओ, कौन ना बोलता है? कोई ना नहीं बोलता है, क्योंकि ये सब सृष्टि के भाग है और हमारा फर्ज है। अभी गर्मी बहुत है ना, तो आपको पक्षियों के लिए पानी या चारा रखना चाहिए, वो मना नहीं है, पर आपने अपने लिए कल्याण सोचा, आत्मा आत्म कल्याण, कि जिसका फल आपको अनेक जन्मों तक मिलेगा, और अगर आपको मिलेगा तो आप अनेकों को भी मिलवाएंगे। यू कैन नॉट स्टे विदाउट क्रिएटिंग फॉर्च्यून फॉर अदर्स, ऐसा है। तो वो राजयोग है। परमात्मा वो नहीं सिखाएगा जिससे आप स्वार्थी हो जाओ, लेकिन परमात्मा का सब सुनेंगे भी नहीं ना, तो सब राजयोग कैसे सीखेंगे बताओ, है कि नहीं? तो राजयोग एक टाइटल है खाली, पर जीने का तरीका। अभी एक पूरा ग्रुप का मैसेज आया था कि मुंबई में अभी से आपको भिखारियों को पैसा नहीं देना है, आप भले उसको खिलाओ, पानी पिलाओ, छाछ पिलाओ, चाय पिलाओ, जो भी करना है करो, कपड़े दो, नौकरी दो, लेकिन उसको पैसा नहीं देना है। तो क्या ये सही है? हाथ खड़ा करें जो कहते हैं सही है। हाँ, तो पैसे के लिए हाथ लंबा करना अच्छी बात है। जो व्यक्ति, चलो, चोरी नहीं करता है, मांगता भी नहीं है, उधारी लेता है, पर किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि उधारी लेने से ही व्यक्ति दुखी बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम आए हैं अपने हाथों से कर्म करके कमाने के लिए, है कि नहीं? तो ये मेन है ना। पर अगर समझो कोई बहुत मजबूर है, किसी को लात मार के घर से निकाल दिया गया है, तो आप उसको सहारा दो, उसको कोई रीति से मदद करो, पर ऐसा नहीं कि हाँ तुम रोज आना, मैं 100 रुपया दूंगा तुम्हें। अगर आप ही नहीं रहे तो 100 रुपया कैसे मिलेगा उसको? आपसे के पास ही 100 रुपया मदद के लिए नहीं है तो वो तो सोचेगा ना, आज तक तो आप दे रहे थे, अभी क्या हुआ, मुझे तो चाहिए ही चाहिए आपसे, क्योंकि वो डिपेंड हो जाएगा आपके लिए। ये बहुत सब गृह्य बातें हैं जो समझने की है। मदद सबके लिए करना है हमको, लेकिन अपना भी कल्याण हो ये भी इंश्योर करो। आप किसी के ऊपर बोझ नहीं बनो, किसी को आपके ऊपर बोझ बनने नहीं दो। कई बार हम मोह के वश बहुत करते हैं, लड़की हमारी सुखी रहे उसके लिए डबल डाउरी दे देते हैं, डबल दहेज दे देते हैं, फिर भी होता है ना जो होना होता है, है कि नहीं?
दीदी
जी,
जैसे आपने बोला कि गऊ को आप खाना खिलाओगे, कतलखाने में जाएगी, हाँ। तो हमें के गऊ के प्रति भाव रखना बंद करें क्या?
नहीं नहीं, करो, मैंने वही बोला, करो, लेकिन पहले ये देखो कि आपका जीवन भी वैसा चल रहा है।
अगर हम गऊ को खाना खिला रहे हैं और उस टाइम भी अपने को एक आत्मा समझ रहे हैं,
हाँ, तो अलग बात है, तो जरूर
वो कर सकते हैं,
कर सकते हैं। अभी देखो समय भी बदल रहा है, पहले तो गऊए घर तक आ जाती थी, अभी सबको मना कर दिया गया है कि रास्तों पर नहीं लाना है, मुंबई में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें बदलती रहती है। अब आपको कैसे करना है? चलो जो पक्षी है उनके लिए करो, जो भी, लेकिन पहले आत्मा का कल्याण अभी संगम युग पर बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आत्मा को अभी फिर से उठा के सबसे ऊंचे स्तर पर लाना है, वो प्रायोरिटी है अभी पूरे दुनिया के लिए। अगर भगवान नहीं आकर कहता तो हम तो वही करते जो आप कह रहे हो, वही करते। हमको थोड़ी बुरा बनना है, हम भी आपकी तरह ही करते, ऑनेस्ट होते अपने कामकाज में, गौ माता को रोटी खिलाते। हमने क्यों चेंज किया? क्योंकि अब हम समझ गए कि जब पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, नई सृष्टि अपने को ही रचना है, तो सबसे पहले, जैसे बोलते हैं ना, फ्लाइट में जाओ तो बच्चे को भी ऑक्सीजन मास्क लगाना है, लेकिन पहले आप खुद को लगाओ, फिर बच्चे को लगाना, इंस्ट्रक्शन होता है। ऐसे ही हमको अभी ये बचाव पूरे नेगेटिव वातावरण से करना होगा। बहुत पाप पुण्य कर लिए, वो कंटिन्यू भले करो पुण्य करना, लेकिन अब जो आत्मा का परिवर्तन करना है वो मेन प्रायोरिटी। ये कोई मनुष्य नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा, वो तो यही बोलेंगे जो आपने कहा। एंड दैट इज ओनली कंटिन्यूइंग एवरी टाइम. क्योंकि जो बेसिक है ना कि हम एक दो की योनियों को मदद करें, वो अलग बात है, वो तो करना ही है. ऐसे नहीं स्वार्थी बना देगा राजयोग, ये तो भगवान क्यों सिखाता. और सत्युग में भी गौ माताएं है या देर. मेडिटेशन कराना था पर 12 बज गया. चलो
ओम
भाई साहब वो गीत बज रहा है अभी.
अब तुम